नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय राजन आज गरम चर्मा शुष्कं वृंदावनेद्भुतं ब्रजौकशां बहुतिथां बभूवा क्रीडगह्वरम् एतत् कौमारजं कर्म हरेरात्मा हि मोक्षणम् मृत्युः पौगंडके बाला दृष्टोचुर्विस्मिता ब्रजे नैतद्विचित्रं मनुजार्भमायिनः परावराणां परमस्य वेधसः अघोऽपि जस्पर्शन धौतपातकः प्रापात्मसाम्यं त्वसतां सुदुर्लभम्। अजगर के रूप में आए हुए अघासुर का चर्म चाम शुष्कम सुख गया, वृंदावने वृंदावन में, अद्भुतम अद्भुत अलौकिक, ब्रजौकशां ब्रजवासियों के लिए, बहुत इथम बहुत काल तक, बभूवा बन गया, गह्वरम खेलने का छिपने का स्थान। कल कथा हुई थी भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार अघासुर के उदर में जाकर बच्चों की रक्षा किए और बछड़ों की, और उसके बाद देवताओं ने किस तरह भगवान की स्तुति की, गुणगान किया, पुष्प वर्षा किए, नर्तन किए, इन सब का वर्णन हुआ। अब इसके बाद एक अद्भुत घटना सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि केवल देवताओं को ही नहीं, अन्य जीवों को ही नहीं, इस विश्व के विधाता ब्रह्मा जी को भी बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ इस लीला से। तदद्भुत स्तोत्र सुवाद्य गीतिका जयादि नायकोत्सव मंगल स्वनान श्रुत्वा सुधामनं त्यज आगतोचिरा दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम्। ब्रह्मा जी अपने धाम में थे उस समय सत्यलोक में। इधर जब अघासुर का उद्धार हो रहा था, जब भगवान अघासुर के कंठ में गए, उदर में गए, तो देवता लोग सब देख रहे थे इस लीला को, सारे देवता देख रहे थे, पर ब्रह्मा जी इस लीला को नहीं देखे। कभी कभी बड़े बड़े मैनेजर लोग ऑफिस में ही व्यस्त रहते हैं तो ब्रह्मा जी इस लीला को नहीं देख पाए, और बाकी सब देवता देखे, उनमें सुख दुख का संचार हो रहा था, भगवान की सफलता से सुख और थोड़ा सा ऐश्वर्य में छत्याभास होने से उनको भय होने लगता था। तो जो भी हो, वृंदावन की इस लीला को देवता लोग देखते रहते थे। श्री ब्रह्मा जी आवाज सुने कब, जब बाजा बजाने वाले देवता बाजा बजाए, गंधर्वों ने गान किया, अप्सराओं ने नृत्य किया, ब्राह्मणों ने स्तुति किया, पार्षदों ने जय जयकार किया, इस तरह से गीत की, वाद्य की, और भी नूपुर कंकड़ की झनकार हो रही थी आदि शब्द इसमें आया है। इसका अर्थ है कि इन सब का जो वर्णन है वो तो आवाज हुई ही, अप्सराओं के पैर के नूपुर झनक रहे थे उस समय, और करताल बजाया जा रहा था, कई लोग करताल बजा रहे थे। करताल मतलब हाथ, करताल ऐसे ऐसे जय 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 हो रहा था। तो यह इतनी तुमुल ध्वनि हुई कि ब्रह्मा जी के धाम तक पहुंच गई आवाज। ब्रह्मा जी सुने, श्रुत्वा सब धामनो अंति अज अंति समीपम, ब्रह्मा जी अपने धाम के बिल्कुल निकट आवाज को सुने, अर्थात उनके धाम में आवाज पहुंची। तो ब्रह्मा जी को बड़ा कौतूहल हुआ, वे तुरंत ही अपने हंसाकार विमान पर चढ़कर और बड़े वेग से उस तरफ चले जहां से आवाज आ रही थी। तो आवाज तो वृंदावन के आकाश में ऊपर हो रही थी, थोड़े ही ऊपर, सारे देवता नृत्य कर रहे थे, गा रहे थे, बजा रहे थे, पुष्प वर्षा हो रही थी। तो ब्रह्मा जी बड़े वेग से आए और भगवान की इस लीला पर भी विस्मित हो गए। जगाम विस्मयम, क्या लीला! एक तो अघासुर की मुक्ति, वहां उन्होंने देखा, वो तो समझ गए क्यों जय जयकार हो रहा है। किसी एक देवता से पूछे होंगे कि क्या ये तमाशा है, तो लोग कहे अघासुर मुक्त हो गया। अघासुर मुक्त हो गया, ब्रह्मा जी थोड़ा सा क्रुद्ध हुए भगवान पर। अघासुर के पाप में कितने कंप्यूटर लगे थे लेखा जोखा करने में, कितना रजिस्टर, कितने क्लर्क खटे थे। ब्रह्मा जी सोचते थे इसको बहुत सजा दी जाएगी, ये पापी है, ये है। और जब भगवान ने मुक्त कर दिया तो ब्रह्मा जी को थोड़ा कोप हुआ, तो भगवान मेहनत क्यों करा, इसके पापों के लेखा जोखा का भार क्यों दिए थे हम, जब इसको मुक्त करना था, इसके कर्मों के फल को इसे भोगने नहीं देना था, तो भगवान इतने मेहनत क्यों कराए। इसको प्रेम कोप कहते हैं। तो वास्तव में क्रोध ब्रह्मा जी को नहीं हुआ, तो आए देखे, एक तो भगवान का विहार वृंदावन में एक गोप बालक के रूप में इस तरह से, और बच्चों का और कृष्ण का प्रवेश अघासुर के मुख में उन्होंने सुना। यह दृष्टवा शब्द है, दृष्टवा का अर्थ यह है कि अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने सब देख लिया कि ऐसे ऐसे हुआ है। और तब जगाम विस्मयम, ब्रह्मा जी चकित हो गए, बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ ब्रह्मा जी। दृष्टवा मही इससे मही दृष्टवा, भगवान की महिमा को देख करके ब्रह्मा जी बहुत विस्मित हुए, आश्चर्य में पड़ गए। क्या कोई इतना दयालु हो सकता है? ब्रह्मा जी को भगवान की महिमा पर आश्चर्य हो रहा है। दया की सीमा भगवान ने प्रदर्शित कर दिया अघासुर के उद्धार में। तो यह है महिमा। अथवा श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं महिषस्य, जो मही के इस पृथ्वी के ईश्वर हैं, पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं, उनके विषय में उनको देख करके ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। अथवा ईशस्य मही दृष्टवा विस्मयम जगाम, ईश्वर के स्वयं भगवान श्री कृष्ण की महिमा को देख करके विस्मित हो गए। महिमा जितनी भी भगवान की है उसमें सबसे बड़ी महिमा है उनकी दयालुता। दया एक बहुत बड़ा गुण है, जो व्यक्ति दयालु है तो वह बड़ा है, बहुत बड़ा व्यक्ति है। दया एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को महत्व पद पर ला देता है। तो भगवान में दया की पराकाष्ठा। ब्रह्मा जी को विस्मय इसलिए हुआ कि ब्रह्मा जी जानते थे कि भगवान की भक्ति करने पर तब कोई उनके समान रूप पाता है, उनका पार्षद बनता है, उनके धाम में जाता है। लेकिन अब तक वे ये नहीं सुने थे कि भगवान से, जानते थे कि भगवान से द्रोह करने वाला व्यक्ति भी भगवान के धाम में जाएगा, उनका सामी पे पाएगा या सारू पे पाएगा। तो ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। वास्तविकता यह है कि भगवान के अन्य जितने भी स्वरूप हैं, जैसे भगवान नारायण या कच्छ बारह मत्स्य आदि, तो इनमें चूंकि ये भगवान के अंश हैं, इसलिए दया भी आंशिक रूप से ही इनमें रहती है, पर स्वयं भगवान में दया भी पूर्ण पराकाष्ठा में होती है। तो अन्य अवतारों में जो द्रोह करते हैं भगवान से, उनको कभी वैकुंठ नहीं मिलता है, ये भगवान के निकट वास नहीं करते हैं। परंतु श्री कृष्ण एक विलक्षण व्यक्ति हैं, स्वयं भगवान है, परिपूर्ण है, इसलिए इनमें दया स्नेह और सौंदर्य जस सब कुछ बिल्कुल पूर्ण मात्रा में रहता है। अतः अन्य भगवत स्वरूपों में जो नियम भगवान ने रखा है, वो स्वयं अपने कृष्ण स्वरूप में वो नियम नहीं रखते। ब्रह्मा जी को इस बात से बहुत बड़ा विस्मय हुआ कि अघासुर जैसे पापी को, जो साक्षात अघही है, पाप है, उसको भगवत सारूप्य मुक्ति मिली, भगवान के नित्य लीला में शामिल हुआ। नहीं तो ऐसे जनरल नियम है कि जो असुर मारे जाते हैं भगवान के हाथ से, उनको ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है या साइज मिलता है, लेकिन भगवान का पार्षद होना ये तो कृष्ण के हाथ से मारे जाने पर संभव होता है, स्वयं भगवान के हाथ से, ये विशेषता है। ब्रह्मा जी इसी विशेषता पर विस्मित हो गए कि अघासुर भगवान का पार्षद बन गया, और भगवान अघासुर का वध भी किए तो उसके पेट में जाकर, उसके कंठ में जाकर, उन्होंने कोई थप्पड़ नहीं चलाया, कोई धनुष बाण से नहीं मारा, तलवार से नहीं मारा, उसके भीतर जाकर के और इस तरह उसको मुक्त कर दिए। ये सब भगवान की महिमा है, उनका बड़प्पन है। तो ब्रह्मा जी से बहुत विस्मित हुए। किस किस चीज की आवाज उनके धाम में गई थी, सुवाद, सुगीतिका, जय, नर्तन आदि, इन सब की तुमुल ध्वनि हुई थी, तब ब्रह्मा जी आए हुए थे। यह एक विस्मय हुआ, एक आश्चर्य की बात है महाराज परीक्षित, कि ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए भगवान की महिमा देख करके। अब दूसरा आश्चर्य सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं संबोधन करके राजा परीक्षित को। राजन आज गरम चर्म शुष्कम वृंदावन अद्भुतम ब्रजौ कसाम बहुतिथम बभोवा क्रीड गहवरम। हे महाराज, एक और आश्चर्य सुनिए। अघासुर के अजगर शरीर का चाम वृंदावन में सूख गया, और सूखने के बाद वह भगवान के सखाओं के लिए क्रीड़ा भूमि बन गया, क्रीड़ा स्थल बन गया। सांप के शरीर में चाम ही चाम होता है, तो वृंदावन में सूख गया चाम, शुष्कम चर्म। और अद्भुत आश्चर्य की बात है कि उस सूखे हुए चाम में दुर्गंध नहीं रहा बिल्कुल। तो और सांप इस दुनिया में मरते हैं, देखते होंगे, थोड़ा दूर पर सांप रहता है फिर भी आदमी नाक सिकोड़ता है, वो दुर्गंध आती है शरीर में, ऐसा देखते हैं। कोई भी जीव मरता है तो सूखने पर भी दुर्गंध आती है, और नहीं सूखा है तब तो कहना ही क्या। तो अघासुर का वह शरीर, अजगर का शरीर सूख गया, और उतना ही बड़ा, जितना पहले एक योजन बड़ा कहा गया था, उतना ही बड़ा वो सूख गया। और जैसे बच्चे पहले उत्प्रेक्षा किए थे कि यह पर्वत है, यह शिखर है, या ऐसा है, वास्तव में वैसा ही रह गया, और उसमें खूब खेलते थे। खास करके गहवरम, बच्चे छिपने का, आंख मिचौनी का खेल खेलते थे, और कहीं एकांत में होकर के सीटी बोलते थे तो उसको खोजने के लिए दूसरे लड़के दौड़ते थे, तब तक चुपके से वो दूसरे तरफ चले जाते थे, इस तरह से खेलते थे। यह भगवान की कृपा है। अघासुर की आत्मा वैकुंठ गई, गोलोक गई, और शरीर वृंदावन में बच्चों के लिए क्रीड़ा का स्थान बना। यह है भगवान की कृपा। कौन ऐसा वैष्णव होगा इस संसार में कोई भी जिसका शरीर भगवान के पार्षदों के लिए क्रीड़ा भूमि बने? कीड़ों की क्रीड़ा भूमि बनेगा शरीर, है ना? कितना भी बड़ा वैष्णव हो तो क्या, जमीन में डाल दीजिए शरीर सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, आग में जला दीजिए भस्म हो जाएगा, कोई जीव खा जाएगा तो उसका वीट बन जाएगा, मल बन जाएगा। लेकिन अघासुर का वह दिव्य पावन शरीर भगवान के लिए खेलने का स्थान हो गया। कभी कभी बच्चे अघासुर के शरीर पर बाजा बजाते थे उस चाम पर, और कभी कभी बिछली खेलते थे। बिछली समझते हैं ना, है? पिछलन होता है ना, ये पार्क आदमी बनाए रहते, बच्चे ऊपर चढ़ कर कैसे चलते हैं, उसको क्या कहते हैं इधर, बिछली कहते हैं हम लोग, उस पर पिछलन होता है, पिछलन शब्द है संस्कृत में। तो बच्चे चढ़ करके और ऊपर से जब नीचे चलते हैं तो उनको बहुत बड़ा आनंद प्राप्त होता है। अघासुर के शरीर पर बच्चे इस तरह खेलते थे, और खास करके छिपने का और खोजने का, एकदम अंधकार में प्रवेश करके और खोजा करते, और सूख गया और उसके चाम से, उसके शरीर से दिव्य सुगंध निकला करते थे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि पुतना का शरीर जब जलाया गया तो अगुरु की सुगंध निकली थी उसे, और ब्रजवासी चकित हो गए, इतना बड़ा धुआं कहां से आ रहा है, कहां अगुरु जलाया जा रहा है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि नंद बाबा आदि चकित होकर के ये सोचने लगे कि ये धुआं नीचे से आ रहा है तो लगता है कि सूतल लोक में बलि महाराज बहुत विशाल भंडार अगुरु का जलाए हैं। वो तो भगवान के भक्त हैं, तो सूतल लोक में ये जलाया गया है, अथवा भगवान इंद्र स्वर्ग लोक में इतना अगुरु जलाए हैं, वो सुगंध इधर से फैल रहा है, किसी को पता नहीं है, कोई राक्षसी का शरीर जला हुआ है और इसलिए सुगंध है। सुगंध इसलिए था कि श्री कृष्ण पूतना के देह को आक्रमित करके दूध पिए थे। वो दूध पिलाने नहीं गए थे, अपने स्तनों में विष देने गए थे कृष्ण को, लेकिन भगवान दूध पी लिए, विष भी पिए, दूध भी पिए और प्राण भी पी गए, तीनों पी गए। वो जब वो भागी थी, चिल्ला कर हाय हाय करके भागी, तो भगवान और गिरने के भय से और जकड़ गए उसके शरीर से, तो स्तनों को पकड़े थे अपने होठों से बहुत दृढ़ता से, और दोनों हाथों से स्तन पकड़े थे, और पैर को भी दबाए थे कि मैं गिर न जाऊं। इस तरह से जिसके शरीर को समाक्रम्य सब तरह से जकड़ करके परब्रह्म भगवान ने दूध पिया था, उसका स्तन पिया था, इस कारण से उसके सारे कलुष निकल गए, और जब शरीर जलाया गया तो उसमें से दिव्य सुगंध निकला। ये भगवान की विशेषता है। भगवान के अंगों का स्पर्श प्राप्त हुआ था पुतना को, यह तो बाहर से स्पर्श प्राप्त हुआ था पुतना को भगवान के अंगों का, अघासुर के तो भीतर भगवान पूरा घुस गए थे, और पूरा, जैसा मैं एयर टाइट कहा था, पूरा सट गए थे उसके मुख में और फिर पेट में भी गए, तो उसके शरीर से सुगंध निकले और ब्रजवासियों के लिए वह रम्य भूमि बन जाए, खेलने का स्थान बन जाए, कृष्ण को आनंद देने वाला स्थान बन जाए, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। तो आत्मा भगवान के धाम में और शरीर भी भगवान के इस भौम धाम में रहा, खेलने का स्थान बना। यह है भगवान की विशेषता। भगवान के संपर्क में आते ही कोई वस्तु दिव्य हो जाती है। इसको वस्तु का सद्गुण कहते हैं, वस्तु सद्गुण। किसी वस्तु की अपनी खास विशेषता होती है, और उसे कोई वस्तु आकर के सटती है तो उसमें रूपांतरण हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, स्वाति नक्षत्र में जब मेघ से कोई बूंद गिरता है, वर्षा होती है, तो यदि वर्षा का बूंद कमल के पत्ते पर पड़ता है तो वह मोती जैसा चमकने लगता है। रहता है जल, लेकिन कमल के पत्ते पर थोड़े काल के लिए मोती जैसा चमकता है, फिर ढलक जाता है। तो कमल के पत्ते पर बूंद गिरा तो मोती जैसा लगता है, और सीप में यदि गिरा समुद्र के तो मोती बन जाता है। बूंद एक समान है, लेकिन चूंकि सीप में अधिष्ठित हुआ, सीप अधिष्ठान में गिरा तो वह मोती बन जाता है। कमल के पत्ते पर वह मोती जैसा चमकता है, और वही जल यदि तप्त लोहा पर गिरे तो अपनी सत्ता भी खो देता है, फनफन फनफन करके फिर उड़ जाता है वाष्प बन करके। तो तप्त लोहा पर यदि वो बूंद गिरता है तो अपनी सत्ता भी खो देता है, जल जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन कमल के पत्ते पर गिरता है तो मोती जैसा लगता है, और सीप में गिरता है, सीपी में, तो वो मोती सचमुच बन जाता है। तो इस तरह जीव की जो बुद्धि है, मन है या शरीर है, भिन्न भिन्न अधिष्ठान में गिरने पर भिन्न भिन्न गति को प्राप्त होता है। तो जितने भी अधिष्ठान हैं, जितने भी सुंदर वस्तुएं हैं, सद्गुणवती हैं, दिव्य हैं, उनमें सबसे बढ़ करके भगवान का श्री विग्रह है, श्री अंग। तो किसी भी तरह से कोई व्यक्ति यदि भगवान के अंगों का चिंतन भी करे, या वर्णन करे, या आंख से दर्शन करे, या त्वगिंद्रिय से छुए, तो उसका शरीर भी भगवान के शरीर जैसा हो जाता है, भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये जल की बूंद, मेघ की बूंद प्राकृत है, और कमल का पत्ता भी प्राकृत है, सीपी भी प्राकृत है, और तप्त लोहा भी प्राकृत है। जब एक प्राकृत वस्तु दूसरे प्राकृत वस्तु को अपनी तरह से प्रभावित कर सकती है, तो अप्राकृत अलौकिक शक्ति संपन्न परब्रह्म भगवान से कोई संपर्क करे तो वह क्यों नहीं भगवान के गुणों से विभूषित हो जाएगा। साक्षात पाप, साक्षात अघ भी भगवान के स्पर्श से पवित्र हो गए। जत स्पर्शन धूत पातक धौत पातक। तो यह एक आश्चर्य की बात है कि अघासुर का वह सूखा हुआ चाम ब्रजवासियों के लिए रमणीय स्थान हो गया। जैसे गिरिराज जी हैं, जमुना जी का किनारा है, वैसे ही अघासुर का शरीर भगवान के लीला के लिए भूमि स्वरूप बन गया। जिसमें भगवान छिपते थे, खेलते थे, बिजली खेलते थे और आनंद मना रहे थे। यह भगवान के श्रीअंग की विशेषता। अच्छा, फिर तीसरा आश्चर्य वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। एतत् कौमारजम् कर्म हरेरात्मा हि मोक्षणम् मृत्योः पौगंडके बाला दृष्टोऽसुर विस्मिता व्रजे। तो तीसरा आश्चर्य वर्णन कर रहे हैं कि ये जो भगवान की लीला हुई अघासुर को मुक्त करने की, और अघासुर रूप मृत्यु से बच्चों को मुक्त करने की, कौमारजम कर्म, ये पांचवें वर्ष के प्रारंभ में लीला हुई थी। कौमारजम, एक से लेकर के पांच वर्ष की अवस्था को कुमारावस्था कहते हैं, और छह से लेकर दस तक एक पौगंड अवस्था होती है, और ग्यारह से पंद्रह सोलह तक एक किशोरावस्था होती है, और उसके बाद जौवनम ततः परम, इसके बाद युवावस्था। तो ये जो लीला भगवान ने किया था कौमार अवस्था में किया था, कौमार के बिल्कुल प्रारंभ में, पांचवें वर्ष के प्रारंभ में। पर बच्चे छठे वर्ष के प्रारंभ में जाकर के ब्रज में ये लीला सुनाए, और यह कहे कि अद्यानेन महाव्यालो, अद्यानेन महाव्यालो नंद सुनना, आज नंद नंदन ने बहुत बड़ा सांप मारा। बच्चे एक साल के बाद जाकर ब्रज में वर्णन किए कि आज नंद नंदन ने एक बहुत बड़ा सांप मारा। वे लोग नाम नहीं जानते थे, अघ सघ उनको क्या पता था, उनको यह भी पता नहीं था कि कौन से ने भेजा था, क्या किया था। इसलिए बच्चे महाव्याल कहे, महाव्याल, आज कृष्ण ने बहुत बड़ा सांप मारा वृंदावन में। आश्चर्य की बात है कि साल भरे लोग कहां थे, एक साल के बाद जाकर के ब्रज में कह रहे हैं अपने माँ से, अपने पिता से या अन्य ब्रजवासियों से, और वो चकित थे, आज नंद नंदन ने बहुत बड़ा सांप मारा है, और इतना बड़ा सांप, इतना बड़ा सांप, अब चलिए देखिए कितना बड़ा है, कल सवेरे चलेंगे। वो लोग ये कहते होंगे, अब तो रात होने वाली थी, तो कल चलेंगे, देखिए कितना बड़ा सांप मारा है, पता नहीं कहाँ पहले रहता था, कहाँ से आया है। उनको पता नहीं था कि मथुरा के एक साधारण भवन में भी वाट सकता था, वो तो आदमी के रूप में रहता था और इस तरह से भयंकर रूप बनाया था। तो यह एक आश्चर्य की बात है। एतत् कौमारजम कर्म हरेरात्मा ही मोक्षणम मृत्यो पौगंडके बाला दृष्टोचुर विस्मिता ब्रजे दृष्टवा ऊचु। बच्चों ने यही कहा कि हम आज देख करके आए हैं, कृष्ण ने एक बहुत बड़े सर्प का वध किया और हम लोग सब उसके पेट के भीतर चले गए थे। हम लोग ये समझे कि ये बहुत बड़ा पर्वत है, पर्वत का शिखर है जो देखने में केवल अजगर के मुख जैसा लग रहा है। वो बच्चे तो हाफते हुए कह रहे थे, डरते हैं, बाप रे बाप, आज हम लोग सांप के मुख में चले गए थे, अजगर के मुख में चले गए थे, कृष्ण अभी रक्षा किया है। तो वो लोग पूछते थे कब कब, अरे अभी एक दो घंटा पहले, एक दो घंटा पहले रक्षा किया है, आज ही आज। यह एक आश्चर्य हुआ। इसी पर महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। इत्थम स्वरातुश्चरितम विचित्रम इत्थम द्विजः जादव देव दत्तः श्रुत्वा स्वरातुश्चरितम विचित्रम पप्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्यम वैयासकिं जन्निगृहीत चेतः। तो यह कथा सूत जी सुना रहे हैं सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में। तो यहाँ पर सूत जी बोलते हैं, हे द्विजा, हे सौनकादि ब्राह्मणों, इस प्रकार यादव देव दत्त, यादवों के देवता भगवान श्री कृष्ण ने जिनकी रक्षा किया था परीक्षित की, उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित थे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र मारा था, अमोघ अस्त्र, परंतु भगवान उत्तरा के गर्भ में जा करके अपनी शक्ति से परीक्षित की रक्षा किए और रक्षा करके उन्होंने दिया था युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर महाराज को दिया था। तो राति ददाति, इसीलिए परीक्षित महाराज को विष्णु रात कहते हैं। विष्णु ने ब्रह्मास्त्र से बचा करके और युधिष्ठिर को दान दिया था परीक्षित को, यही वंशधर थे महाराज। युधिष्ठिर के वंश में कोई नहीं बचा था, सब मर गए थे, पांचों भाइयों के एक एक पुत्र थे द्रौपदी जी से। तो उनको सोई ही अवस्था में धृष्टद्युम्न ने काट दिया था, ने अश्वत्थामा ने मार दिया था, तो कोई नहीं बचा था। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे जो अभिमन्यु के पुत्र थे, अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे जिनका जन्म सुभद्रा जी से हुआ था। इस प्रकार कोई वंश में नहीं बचा था, तो भगवान रक्षा करके परीक्षित नामक बच्चे की और दिए कि हे महाराज, ये आपका वंशधर है, आप इसे लीजिए। इसीलिए परीक्षित महाराज का नाम पड़ा विष्णु रात या कृष्ण रात, और यहां पर कहा गया जादव देव दत्त। जादवा नाम देव श्री कृष्ण तेन दत्त महाराजा युधिष्ठिर आय, महाराज युधिष्ठिर को दिया गया था। यह जो घटना है अघासुर के वध की और बच्चों के उद्धार की, तो महाराज परीक्षित ने देखा कि मेरा जैसे उद्धार किया भगवान ने, मेरी जैसे रक्षा किया था, ठीक इसी तरह से रक्षा बच्चों की किया था। तो यह इस दोनों लीला में साम्य देख करके महाराज परीक्षित और अधिक आकर्षित हुए। उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने परीक्षित की रक्षा किया था और यहां अघासुर के पेट में जाकर के भगवान ने बछड़े और बच्चों की रक्षा किया था। इन दोनों के द्वारा भगवान के भक्त वात्सल्य गुण को प्रकाशित किया गया है। भगवान वत्सल हैं, स्नेहवान हैं अपने भक्तों के प्रति। इसलिए वे उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और यह भी वर्णन है कि भगवान सुदर्शन चक्र लेकर गए उत्तरा के गर्भ में, बहुत जोग बल से छोटा बन करके। तो भगवान को ये विश्वास नहीं हुआ कि सुदर्शन चक्र काम कर सकता, हो सकता है कि ये फेल हो जाए, तो गदा भी लेकर के गए थे, जबकि किसी भी अस्त्र की कोई जरूरत नहीं थी। रक्षा उन्होंने सुदर्शन से किया, ब्रह्मास्त्र को विफल किया सुदर्शन चक्र से, और गदा को घुमा रहे थे गर्भ के चारों तरफ, बच्चे के चारों तरफ। और परीक्षित महाराज जन्म से पूर्व ही अपने मां के गर्भ में ही भगवान का दर्शन किए थे। और इनका परीक्षित नाम इसलिए हुआ कि जब ये गर्भ से प्रकट हुए, थोड़ा बड़े हुए, तो ये बराबर परीक्षण करते थे, परितः ईक्षण करते, देखते थे कि गर्भ में जो व्यक्ति मेरी रक्षा किया वो कौन है, कहाँ है। तो किसी भी सांवले मनुष्य को देख करके सोचते थे वो कहाँ है जिन्होंने हमारी रक्षा किया। इनके आंखों में श्याम सुंदर बस गए थे। जन्म से पहले ही इतनी फर्स्ट क्लास की मंगला आरती जो कर रहा है, गर्भ में भगवान का दर्शन किया, वो संस्कार कैसे मिट सकता था। तो परितः ईक्षण करते थे, देखते थे वो पुरुष कौन है, वो कौन है, कौन है। इसीलिए इनका नाम परीक्षित रखा गया। हमेशा परीक्षण के मूड में रहते, देखते रहते थे वो कौन है, कौन है। भगवान की छवि इनके आंखों में बस गई थी। तो परीक्षित महाराज के दो नाम प्रसिद्ध है, विष्णुरात और परीक्षित। तो सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार जब परीक्षित महाराज ने सुना अपने स्वामी के चरित्र को, स्वरातु अपने राता, अपने रक्षक के, जिन्होंने इनके मां के गर्भ में प्रवेश करके इनकी रक्षा किया था, तो परीक्षित महाराज जब इस लीला को सुने कि भगवान बच्चों की रक्षा अघासुर के पेट में जाकर किए, तो अपने रक्षा की बात याद आ गई और बहुत आकर्षित हुए और पुनः वही प्रश्न करने लगे, फिर वही लीला पूछते। पप्रच्छ भूयोपि तदेव पुण्यम तत्व, उसी लीला के विषय में फिर प्रश्न कर रहे हैं। तो प्रश्न होगा कि एक बार सुन ही चुके तो अब क्यों प्रश्न कर रहे हैं। तो कहते हैं जन निगृहित चेता, चित इनका इधर उधर जा ही नहीं रहा था। देखिए तीन चार दिन के बाद इनको मरना है, पर मरने आदि की कोई चिंता नहीं, भगवान के लीला की ही जिज्ञासा भरी हुई है। जन निगृहित चेता, जत का अर्थ कथा श्रवणे न निगृहित वशीकृत चेतो जस्य सः, निगृहित चेता। जब कोई व्यक्ति लगातार निरंतर भगवान की लीलाओं को सुनता है, तो एक दिन ऐसा समय आता है कि उसे प्रयास नहीं करना पड़ता है भगवान के चिंतन करने का। वो लीला इतनी आकर्षक होती है कि वही चित्त को वश में कर लेती, चित्त इधर उधर जा नहीं सकता है। तो परीक्षित महाराज का चित्त कृष्ण लीला द्वारा ग्रस्त कर लिया गया था, इसीलिए भूय पप्रच्छ पुनः वही प्रश्न करने लगे। तो महाराज परीक्षित पूछते हैं, तो अंग्रेजी का शौरी शब्द बहुत अच्छा है कि शौरी का अर्थ कृष्ण होता है, सूर पुत्र। तो हमें आगे बढ़ गया, जब सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे थे और उन्होंने यह कहा कि अघासुर मुक्त हो गया, भगवान का पार्षद बन गया, तो इस पर सभा में बैठे हुए कुछ लोग आश्चर्य से चकित हो गए, उनके नेत्र विस्फारित हो गए, मुंह खुल गए, ऐसी किए कथा में कैसे हो सकता है, तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। इतना बड़ा पापी असुर जो अभी अभी बच्चों की हत्या करने के लिए उनको पेट में ले लिया था, उनकी हत्या करना चाहता था, जीवन भर हत्या किया, पाप किया, और वह भगवान का पार्षद बन जाए, बहुत आश्चर्य हुआ। इस पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नहीं तद विचित्रम मनुजार्भमायिन परावराणम परमस्य वेधस अघोपिजत स्पर्शन धौत पातक प्रापात्म साम्यम तोषताम सुदुर्लभम। नहीं तद विचित्रम, आप लोग आश्चर्य मत कीजिए, किसकी लीला है इस पर जरा ध्यान दीजिए। परावराणम परमस्य वेधस, जो पर और अवर, ऊंचे या नीच या छोटे या बड़े, सबसे श्रेष्ठ हैं। बड़े हैं ब्रह्मा जी, शिव जी, या यहां तक कि भगवान के जो अन्य अवतार हैं वे सब बड़े हैं, इनको पर कहते हैं, और अवर जो दूसरे जीव हैं, लेकिन श्री कृष्ण इन सबसे श्रेष्ठ है। परावराणाम परमस्य, पर और अवर दोनों में श्रेष्ठ है श्री कृष्ण। इसलिए इनके जो गुण हैं दया आदि, दिव्यता आदि, ये सब प्रकार से पूर्ण है, श्रेष्ठ है। और वेधसः वे जगत की सृष्टि करते हैं, वेधा है, सबको नियम बना करके सब में रखते हैं। तो नियम कौन बनाया है कि पापी जो है, असुर जो है, भगवान के धाम में नहीं जा सकता है? किसने नियम बनाया है? कृष्ण ने नियम बनाया, ये कृष्ण का नियम है। लेकिन परावराणम परमस्य, पर और सब में श्रेष्ठ हैं, तो भगवान ने दया का भी नियम बनाया है कि वे दयालु हैं, और दया के कारण वे किसी भी व्यक्ति को अपने धाम में ले सकते हैं, भजन की अपेक्षा नहीं करते हैं कृष्ण। अन्यथा पूतना ने क्या भजन किया था? पूतना तो इनको मारने गई थी, लेकिन भगवान उसके डार्क साइड को नहीं देखे, उन्होंने केवल यही देखा कि वृंदावन में आई है, गोकुल में आई है, और गोपी का वेश बनाई है, और मुझे स्तन दे रही है पीने के लिए। भगवान केवल यही देखे, जब दे दिया तो भगवान पीने लगा, और इसके बाद उन्होंने अपनी मां बना लिया नित्य लीला में पूतना को। श्री कृष्ण इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि अन्य जो साधारण नियम हैं उनके तरफ वो ध्यान नहीं देते। इसीलिए परावराणम परमस्य शब्द कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे विलक्षण है। और नियम दूसरों के लिए हैं, अन्य भगवत स्वरूपों के लिए नियम है, ब्रह्मा जी के लिए नियम है, शिव जी के लिए नियम है, ये नियमों में बंध करके किसी को वैकुंठ दें, चाहे कैलाश दें, चाहे स्वर्ग दें, नियमों में बंधे हुए, लेकिन भगवान किसी नियम में नहीं बंधे हुए, जो चाहे कर सकते। महापापी को पार्षद बना सकते हैं, ये उनकी विशेषता है। अघोपि जत स्पर्शन धौत पातक, यही जरा विचार करो ना कि अघासुर भी, साक्षात पाप भी, जिनका स्पर्श होने से धौत पातक, उसके सारे पाप धुल गए, समाप्त हो गए। और इतना ही नहीं, पाप तो खत्म हो ही गए, प्रापात्म साम्यम तो सतम सुदुर्लभम, आत्म साम्यम प्राप, आत्म साम्यम का अर्थ है भगवान का जो रूप है वह रूप प्राप्त कर लिया, भगवान जैसा रूप और चिन्मय दिव्य उनका धाम सब कुछ प्राप्त कर लिया, यह है श्री कृष्ण की विशेषता। असतम सुदुर्लभम, जो सारूप्य मुक्ति या भगवान के धाम की प्राप्ति असत पुरुषों के लिए सुदुर्लभ है, बहुत कठिन है, असंभव है मिलना, वह गति भगवान ने अघासुर को दिया, क्योंकि वे परावराणम परम हैं, वे वेधा हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, और भगवान की सारी शक्तियां एक तरफ रहती हैं, विभुता शक्ति, अपरिच्छिन्नता शक्ति, सर्वज्ञता शक्ति या न्याय प्रियता शक्ति जो भी है, लेकिन जब दया शक्ति आती है समाज में तो सारी शक्तियां दब जाती हैं। ऐसा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जब श्री कृष्ण को बांध रही थी मां जसोदा तो भगवान की सारी शक्तियां लग गई, नहीं बांधने देंगी। जो विभुता शक्ति है वो कहती थी कि जो व्यक्ति जो सर्वव्यापक है प्रभु, उसमें दो चार गज रस्सी कैसे अट सकती है, वो घट रही थी रस्सी हमेशा। विभुता शक्ति, सर्वज्ञता शक्ति और भी नाना प्रकार की शक्तियां जुटी थी, हम ब्रह्म को बांधने नहीं देंगे, बांधने नहीं देंगे। जैसे सूरज की शक्ति है ताप और प्रकाश, कोई व्यक्ति यदि सूरज के पास निकट ले जाए कोई चीज तो जल जाएगी, क्योंकि सूरज का प्रभाव है, शक्ति है, वो सूरज जला देगा, सूरज को कोई ठंडा नहीं कर पाएगा। यदि मान लीजिए यहां से 10-20 टन आइस बर्फ भेजा जाए सूरज के पास, तो बहुत दूर ही बर्फ रहेगी, पिघल कर खत्म हो जाएगी। तो भगवान अनंत हैं, विभु हैं, सर्वज्ञ हैं, उन पर बंधन कैसे लग सकता है? सारी शक्तियां एक मत होकर के यशोदा के विरुद्ध हो गई, हम ब्रह्म को बंधने नहीं देंगे। लेकिन जब भगवान ने अपने मां के परिश्रम को देखा, पसीने से लथपथ हो गई थी, रस्सी से बांध रही थी, गोपियां देख रही थी, तो इसलिए वो डिमोरलाइज्ड हो रही थी। वो लोग कह रहे थे कि छोड़ दीजिए, आपके लाला के भाग्य में बंधन नहीं लिखा है, तो आप क्यों प्रयास कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, कोई पशु थोड़े है कि बांध देंगे। तो माँ यशोदा हठ में आ गई कि नहीं, बांध करके ही रहूंगी, बांध करके रहूंगी, भले शाम हो जाए रात हो जाए, इस गांव की सारी रस्सी लग जाए, चाहे दूसरे गांव से मंगाना पड़े, लेकिन बांध करके ही रहूंगी। तो गांठ बांधने पर परिश्रम होता था, जोड़ती थी तो दो अंगुल कम हो जाता, तो फिर जोड़ती थी, कभी काम नहीं की थी, इतना यशोदा थक गई, पसीने से लथपथ हो गई। जब भगवान ने परिश्रम देखा अपने माँ की, उन्होंने सोचा कि जब मुझे बांधना ही चाहती है तो मुझे बांध जाना चाहिए। माँ का परिश्रम देखकर भगवान के हृदय में कृपा महारानी का जन्म हुआ है, भास्वती शक्ति, सबसे श्रेष्ठ शक्ति भगवान के हृदय में उदित हुई, और जब कृपा देवी उदित हुई तो सारी शक्तियां दब गई और भगवान बंध गए। तो कृपा से बंध है, दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया सिद्ध स्वबंधन है, अपनी माँ का परिश्रम देखे तब उनके भीतर दया आई और दया के कारण माँ के हाथों से बंध गए। अघासुर के उद्धार में भगवान की यह दया शक्ति काम कर रही है, इसीलिए और नियम नहीं देखा गया, पहले इसने क्या किया था, कितना पाप किया, कितना हत्या किया, ये सब कुछ भी विचार नहीं होता, भगवान दयामय है इसलिए उद्धार कर दिए, अतः यह आश्चर्य की बात नहीं है। तब कैमुत्य न्याय से श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सकृत जदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम सएव नित्यात्म सुखानुभूत्य भी विदस्त मायो परमुंग किम पुनः। अब कह रहे हैं कि ये तो अघासुर के उदर में साक्षात परब्रह्म सच्चिदानंद घन भगवान प्रवेश किए थे, ये तो बहुत दूर की बात है। जदंग प्रतिमा, भगवान के श्री विग्रह, भगवान के शरीर की प्रतिमा यदि बनाई जाए कहीं, प्रतिमा प्रतिमूर्ति आप समझते हैं, यदि भगवान के अंग की मूर्ति बनाई जाती है, अंग का अर्थ शरीर रूप, भगवान के रूप का रूप की मूर्ति बनाई जाती है, और उस मूर्ति का कोई ध्यान भर केवल करे, प्रतिमा का केवल ध्यान भी करे मनोमयी, तो उसी से उस व्यक्ति को भगवती गति प्राप्त हो जाती है, वह भगवान का पार्षद बनता है। भगवान के अंग कितने सत्य हैं, भगवान का शरीर कितना सत्य है कि उसकी यदि प्रतिकृति बनाई जाए, उसकी प्रतिमा बनाई जाए, और उस प्रतिमा के डायरेक्ट पूजन की बात छोड़ दीजिए, केवल कोई उसका स्मरण भी करे तो उस व्यक्ति को वैकुंठ में गति प्राप्त होती है, भागवती गति इसको कहते हैं। भागवती गति का अर्थ है कि जहां भगवान रहते हैं वो स्थान जो भगवान का स्वरूप है, ऐसा स्वरूप, भगवान जैसा ज्ञान बल सब कुछ, इसको भागवती गति कहते हैं। भगवान के पास रहेगा, केवल प्रतिमा का चिंतन करने से, और फिर प्रतिमा का श्रृंगार करे व्यक्ति और पूजा करे, तब तो कहना ही क्या। जब प्रतिमा का श्रृंगार करने से, चिंतन करने से व्यक्ति पार्षद बन सकता है, तो वही प्रभु डायरेक्ट साक्षात जिसके भीतर प्रवेश कर गए, उसकी मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है, वो क्यों नहीं पार्षद बनेगा। सकृत जदंग प्रतिमांतराहिता, और वो भी सकृत, एक बार भी कोई व्यक्ति यदि भगवान के श्री विग्रह का चिंतन किया है, जगन्नाथ जी का या बलदेव सुभद्रा और कृष्ण बलराम या साक्षी गोपाल, यदि घर में बैठा हुआ एक बार भी चिंतन कर दे भगवान के श्री विग्रह का, मूर्ति का, तो वह व्यक्ति तत्काल भागवती गति प्राप्त करता है। एक बार सकृत का अर्थ होता है एक बार, वो भी मनोमयी, मनोमयी चिंतन कर दे तो भागवती गति प्राप्त होती है, वैकुंठ में भगवान का पार्षद बनता है। फिर उन भक्तों के विषय में क्या कहना है जो भगवान का श्रृंगार करते हैं, पूजा करते हैं, गीत गाते हैं, कीर्तन करते हैं, उनके विषय में क्या संदेह हो सकता है। और फिर अघासुर के विषय में क्या कहना है जिसके भीतर साक्षात भगवान चले गए, वहां तो प्रतिमा और मूर्ति की कोई बात नहीं है। तो भगवान इतने सत्य हैं, इतने सत्य हैं, उनका अंग श्री विग्रह इतना सत्य है, चिन्मय है, कि उसकी मूर्ति बनाई जाए तो उस मूर्ति से ही कल्याण हो जाता है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने एक जगह कहा है कि मूर्ति में श्रद्धा होने से मूर्ति कल्याण करती है, श्री विग्रह, लेकिन भगवान ऐसे हैं कि बिना श्रद्धा के ही कल्याण कर देते। तो अघासुर तो उनको चबाने के लिए, खाने के लिए अपने उदर में लिया था, कृष्ण गए थे उसके मुख में, लेकिन फिर भी वह भगवान का पार्षद बन गए, जो सबसे उत्कृष्ट गति है, जो दुष्टों के लिए असताम, लोगों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती है गति, वह गति अघासुर को भगवान ने दिया। तो इसके बाद वाले श्लोक में इसमें सकृत जदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवती ददौ गति, इसमें भगवान के श्री विग्रह के आराधना की महिमा व्यक्त की गई। हम लोगों का तो ऐसा भाग्य नहीं है जैसे अघासुर का था कि हम अपने भीतर भगवान को का स्पर्श प्राप्त कर सके, तो इसीलिए आचार्य लोग भगवान के श्री विग्रह को स्थापित करते हैं, हम उसे छू सकते हैं, भगवान उसमें अवतरित होते हैं, हमारी अर्चा को स्वीकार करने के लिए, हमारी पूजा को स्वीकार करने के लिए अवतार लेते हैं, इसलिए इसको अर्चावतार कहते हैं। और भगवान डायरेक्ट व्यवहार करते हैं भक्तों से। इस उड़ीसा राज्य में तो बहुत से श्री विग्रह ऐसे हैं जिनके विषय में बिल्कुल सत्य कथा है कि श्री विग्रह ने, मूर्ति ने किस प्रकार अपने भक्त के साथ व्यवहार किया। जैसे क्षीरचोर गोपीनाथ अपने भक्त माधवेंद्र पुरी के लिए भगवान अपने ही भोग लगाए हुए खीर को चुरा लिए थे। वो कथा है चैतन्य चरितामृत में कि माधवेंद्र पुरी जी जब यहाँ आए थे क्षीरचोर गोपीनाथ, तो उन्होंने सुना कि यहाँ भगवान को खीर भोग लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो उनके मन में आ गया थोड़ी देर के लिए कि मुझे खीर मिलता खाने को। वो अयाचित वृत्ति में रहते थे, कभी किसी से मांगते नहीं थे, तो मन में आया तो फिर उन्होंने अपने दांतों से जीभ दबाया, अरे मैं क्या है सोच रहा हूं, लेकिन इच्छा तो हो गई और मांग सकते नहीं थे। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है कि 12 मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन में भोग लगते थे, तो भगवान देख लिए कि हमारे भक्त की इच्छा है, वो रात में सो गए थे कहीं बाजार में भूखे, तो भोग लगाने के बाद जब वो हटाने लगा पुजारी, तो एक मटके को, एक छोटे से पात्र को भगवान अपने पीताम्बर में छिपा लिए। तो वो बेचारा ध्यान नहीं दिया पुजारी, रोज रोज कितना गिने, वो ऐसी घटना होती नहीं थी, तो 11 ला कर रख दिए। बाद में विचार होने लगा, वो सो गए थे रास्ते में, तो जब पुजारी सोने चले तो पहले तो वो विचार किए कि एक मटका क्या हुआ, पता नहीं कौन उठा ले गया, और भगवान थोड़े चुराएंगे ऐसा तो सोच नहीं सकते थे। फिर बाद में वो सोने चले, झपकी आ गई, तो क्षीरचोर गोपीनाथ जी ने स्वप्न में कहा कि एक माधवेंद्र नाम के भक्त आए हुए हैं, उनको खीर ले जाकर के दे दो। तो पुजारी सपने में कहते हैं खीर तो हम सब बांट दिए, खीर नहीं है। भगवान ने कहा कि नहीं खीर है, मैं रखा। तो वे सपने से उठ करके जाकर देखे तो सचमुच सिपाही थे, धोती के बगल में ऐसे नीचे पैर के पास छिपा लिए। वो ले गए खीर को, ले करके खोजने लगे, माधव कहाँ है, माधवेंद्र कहाँ है, माधवेंद्र कहाँ है, वो मिले, पुजारी ने उनको दिया। इस तरह भगवान ने अपने भक्त को खीर दिया, खीर को खा करके परमानंद में मग्न हो गए माधवेंद्र पुरी जी, और वो बर्तन को रख लिया और धीरे धीरे वो मिट्टी भी सब खा गए। ये तो क्षीरचोर गोपीनाथ की कथा है। साक्षी गोपाल जी के विषय में जानते ही हैं कि वे वृंदावन से चल करके यहाँ अपने भक्त के लिए गवाही देने आए थे, साक्षी देने आए थे। ये सब सत्य कथाएं हैं। नहीं मानने वाले लोगों के लिए, मूर्खों के लिए तो डायरेक्ट भी भगवान को देख करके नहीं मानेंगे, उनके लिए क्या कहा जाए। लेकिन जिनके पास थोड़ी भी बुद्धि है, थोड़ी भी सद्भावना है, भाव है, तो तुरंत समझ सकते हैं भगवान के इस श्री विग्रह की महिमा को। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि एक बार भी भगवान के श्री विग्रह का, मूर्ति का कोई ध्यान कर दे एक बार, तो उसे वैकुंठ में भगवान के पार्षद स्वरूप की प्राप्ति होती। तो फिर वही नित्य आनंदमय चिन्मय भगवान जो माया को निरस्त किए रहते हैं, अज्ञान नहीं रहता है, शुद्ध सच्चिदानंद घन भगवान जिस अघासुर के उदर में चले गए और वह मुक्त हो गया, तो इसमें क्या आश्चर्य। अपने सभासदों को, कथा सुनने वालों को सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आप आश्चर्य मत कीजिए, अब विचार कीजिए कि किसकी लीला है, कृष्ण क्या है, अद्भुत व्यक्ति है। इस प्रकार से भगवान की महिमा कही जा रही है। मैं तो और भी लीला आगे कहना चाहता हूं, इसलिए परीक्षित महाराज के प्रश्न पर विचार करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। इत्थम स्वरातुश्चरितम् इत्थम द्विजाद्जादव देव दत्तः श्रुत्वा स्वरातुश्चरितम् विचित्रम् भूयः प्रपच्छ तदेव पुण्यम् वैयास किं जन निगृहीत चेता। महाराज, परीक्षित का चित्त भगवान कृष्ण की कथा द्वारा ग्रस्त कर लिया गया था, पुनः कृष्ण कथा के विषय में पूछ रहे हैं। जब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि पांचवें वर्ष में हुई लीला को बच्चे छठे वर्ष में जाकर के कहे, तो महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, ब्रह्मन कालांतर कृतम तत्कालीनम कथम भवेत जत कौमारे हरिकृतम जगुह पौगंड केरभकः। ये ब्रह्मन, भिन्न समय में की गई किया गया कर्म वो तत्कालिक कैसे हो सकता है, जो एक साल पहले कर्म किया गया था, अघासुर का वध किया गया था, बच्चों को मुक्त किया गया था, तो ये बच्चे ये जाकर के क्यों कहे कि आज कृष्ण ने अघासुर का वध किया या सांप का वध किया, ये क्यों कहे। एक साल पहले हुई थी लीला, उसको वे एक साल के बाद यह कह करके वर्णन कर रहे हैं कि आज हुई है, ये क्या बात है, तो साल भर बच्चे कहाँ थे, ये प्रश्न होता है ना। और यह कैसी लीला है कि साल भर पहले कर्म हुआ है, लीला हुई है, और बच्चे आज आकर कह रहे हैं कि आज कृष्ण ने सांप मारा है, हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। तद्ब्रूही मे महायोगिन परम कौतूहलम गुरो। हे महायोगिन, हे सर्वज्ञ सुखदेव जी, और हे मेरे गुरुदेव, मुझे बहुत बड़ा कौतूहल हो रहा है, ये बच्चे साल भर कहाँ थे, एक वर्ष तक कहाँ थे, अथवा जहां भी होंगे तो उनकी चेतना इस तरह से कैसे हुई कि वे एक साल पहले की लीला को कह रहे हैं कि आज कृष्ण ने सांप मारा है, ऐसा क्यों कहे। हमें बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। नूना में तद हरे रेव माया भवती नान्यथ, निश्चित ही भगवान कृष्ण की ही कोई माया होगी, अन्यथा बच्चों की बुद्धि को मोहित कर लेना साधारण माया का काम नहीं हो सकता। ये श्री कृष्ण की ही कोई लीला है, माया है, कि बच्चों को यही भाव हुआ कि आज कृष्ण ने मारा है सांप को और जाकर के ब्रज में कहे। तो एक साल वे कहाँ थे, किस तरह से भूले हुए थे, यह हमको सुनाइए। तद्ब्रू ही आप इसके विषय में बोलिए, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं और महायोगी हैं। योगी का अर्थ सर्वज्ञ जानकार, आप महायोगी, कृपया हमें सुनाइए। इस तरह से कथा के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। थर्ड क्लास का प्रश्न नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग बहुत गलत प्रश्न करते हैं, खास करके माता जी लोग बहुत प्रश्न हल्का करते। एक माता जी आज हमसे मिली तो वो कहती हैं, प्रश्न करना है, प्रश्न करना है। पहले हमारे गुरुदेव हमारे सपना में बहुत आते थे, अब क्यों नहीं आते हैं। तो मैं क्या जानता हूँ क्यों नहीं आते हैं। तो हमको इसका क्या ज्ञान है? इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देना तो हम लोगों के लिए असंभव है वास्तव में। अब कब सपना आप देख रही हैं और हम कहां से कनेक्शन जोड़ेंगे बिजली जैसा, तब लाइन आएगा वीडियो का, टेलीविजन का, कि सपना, ये तो ज्ञान है नहीं कुछ। आज हम सोएंगे तो क्या सपना देखेंगे, अपना ही कोई ज्ञान नहीं है, है ना? हम लोग साधु हैं, गुरु बने हुए हैं, लेकिन बिल्कुल पता नहीं है कि आज कौन सपना आएगा, सपना आएगा कि नहीं आएगा ये भी पता नहीं है, और उसमें भी कौन सपना आएगा ये तो कोई ज्ञान है नहीं। तो हम दूसरे के लिए क्या कहेंगे कि क्यों नहीं सपना आ रहा है? ये सब फालतू प्रश्न होते हैं, और खास करके भावुक स्त्रियां इसी प्रकार की बात, आज हमने ये सपना देखा, आज हमने ये देखा। मैं कहता हूं जो जागृत में देखी हो वो बोलो, सपना की बात हमसे मत बोलो। कई बार मैं कहता हूं ये सब प्रपंच होता है वास्तव में, और इसमें 50% झूठी बात होती है, ये विश्वास कीजिए। विश्वास नहीं करना चाहिए कि हाँ सपना ऐसा देखा है, ये देखा वो देखा। मैं अपना अनुभव कहता हूं कि इस तरह से 50% झूठी स्त्रियां बात कहती है। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इस तरह की सपना की बात कहने वाला, प्रश्न पूछने वाला, एक तो दुर्लभ टाइम दीजिए पूछने के लिए, और इस तरह का प्रश्न पूछा जाए। महाराज परीक्षित का प्रश्न बहुत है सटीक है, भगवान कृष्ण के विषय में है, तो सुखदेव गोस्वामी इसका अभिनंदन भी किए, बहुत प्रसन्न हुए प्रश्न सुनकर। और अब अपने भाग्य की सराहना कर रहे महाराज परीक्षित, वयम धन्यतमा लोके गुरोपि छात्र बंधव जत पिबामो मुहु तत् पुण्यम कृष्ण कथामृतम। हे गुरुदेव, इस संसार में सबसे धन्यतम, सबसे मोस्ट ब्लेसेड, सबसे धन्यतम व्यक्ति हम हैं। वयम धन्यतमा लोके गुरोपि छत्र बंधव, यद्यपि हम क्षत्रियाधम हैं, हमने एक ब्राह्मण का अपराध किया, उसके गले में मृत सर्प डाल करके, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि इस संसार में एक अधम क्षत्रिय होते हुए भी हम सबसे अधिक धन्य, धन्यतमा। क्यों? क्योंकि आपके मुख कमल से हम पुण्यम कृष्ण कथा मृतम पी रहे हैं, सबसे दुर्लभ और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु हम पी रहे हैं, इसलिए हम धन्यतम हैं। श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी लिखते हैं, तो शिष्यत्व मात्रेण, हम आपके शिष्य बने हुए हैं, इस कारण से हम धन्य हैं, केवल आपका शिष्य होने से धन्य हैं। और आपके मुख से कृष्ण कथा सुनने के कारण धन्यतर हैं, और मुहु बारंबार सुनने से धन्यतम है। धन्य, धन्यतर और धन्यतम, धन्य का अर्थ है सबसे धनी, सबसे सौभाग्यवान, जो इस प्रकार का गुरु पाया है सुखदेव गोस्वामी जैसे। तो सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि हम धन्य, केवल आपका शिष्य होने से हम धन्य हैं, और कथा सुनने से धन्यतर हैं, बारंबार कथा सुनने से धन्यतम है। यहां पर एक यह भी बात ध्वनित होती है कि वास्तव में गुरु कृष्ण कथा सुनने के लिए ही बनाया जाता है, यही जीवन का लाभ। गुरु कोई फैशन नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं कि अभी हमने गुरु नहीं किया है, गुरु करना चाहिए, गुरु करना चाहिए, इसी फेर में घुमा करते हैं, गुरु करना चाहिए किस लिए? ये तो ऐसी स्थिति है कि किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति देख रहा है कि वो डॉक्टर के पास गया है, वो डॉक्टर के पास गया है, उसका एक डॉक्टर है, एक फैमिली डॉक्टर है, तो हमको भी एक डॉक्टर रखना चाहिए, किस लिए? वो रखा है इसलिए, मान लीजिए उत्तर, वो रखा है, वो अपने घर में एक डॉक्टर रखा है, कुत्ता रखा है, तो हमको भी एक रखना चाहिए। बिना जिज्ञासा के, बिना मतलब के, बिना विचार के, और गुरु चाहिए, तो इस तरह से ठग गुरु तो भरे ही हुए हैं। जितना शिष्य बनने के लिए लोग तैयार नहीं, उससे ज्यादा गुरु दुनिया में भरे पड़े, तो ऐसे ही मिलेंगे। तो गुरु चाहिए गुरु चाहिए। गुरु बनता है कृष्ण के बारे में बताने के लिए। तो यहाँ पर श्रीपद सनातन गोस्वामी की टीका के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, कहते हैं कि केवल आपका शिष्य होने से हम धन्य हैं और आपके मुख से कृष्ण कथा सुन रहे हैं तो धन्यतर हैं, बारंबार कथा सुन रहे हैं इसलिए धन्यतम। हमारे समान सौभाग्यशाली व्यक्ति इस तीनों जगत में कोई नहीं। क्यों सौभाग्यशाली है कि पी रहे हैं बारंबार कृष्ण कथामृत पी रहे हैं। इस संसार में सबसे दुर्लभ और महत्वपूर्ण वस्तु है कृष्ण कथामृत, ये पी रहे इसलिए हम धन्य। जो व्यक्ति भगवान की कथा को सुनता है उसके आगे धनी आदि क्या है, कुछ भी नहीं, इंद्र भी कुछ नहीं। ये सौभाग्य होता है व्यक्ति का। तो महाराज परीक्षित अपने को सबसे धन्य व्यक्ति कह रहे हैं, जबकि इनको 3 दिन के बाद मरना है। आप जरा विचार कीजिए, सम्राट पद पर हैं, ब्राह्मण का साप हो चुका है, 3 दिन के बाद इनको शरीर अब छोड़ देना है। ये 10वां स्कंध कथा सुन रहे हैं और स्कंधों को पार कर चुके हैं, तो 3 दिन जीना है और 3 दिन केवल जीने वाला व्यक्ति कह रहा है कि मैं सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूं। दुनिया का सब कुछ तो छूट ही जाएगा लेकिन कृष्ण कथा पी रहा हूं, कृष्ण कथामृत पी रहा हूं और इसके द्वारा जो कृष्ण का स्मरण हो रहा है, कृष्ण की लीलाओं का संजोग हो रहा है। तो महाराज परीक्षित को दृढ़ विश्वास है कि मैं कृष्ण की लीला में प्रविष्ट होऊंगा, मैं जाऊंगा भगवान के पास। तो इससे बड़ा धन्य व्यक्ति कौन होगा। तो वयम धन्य तमा लोग, इस प्रकार से अपनी प्रशंसा के वाक्य बहुत कम जगह मिलते हैं। और ऐसा कहा जाए कि मैं धन्य हूं तब तो ठीक ही है, लेकिन वयम धन्य तमा, हम सबसे अधिक सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं क्योंकि हम आपके मुख से बारंबार कृष्ण कथा पी रहे हैं। तो इसके द्वारा सिद्ध है कि देखिए, चक्रवर्ती सम्राट होना या बहुत बड़े पद पर होना, मिनिस्टर होना, मंत्री होना, कुछ भी प्राप्त करना, यह जीवन का सौभाग्य नहीं है। कृष्ण कथामृत को मुंह बारंबार पीना यही सबसे बड़ा सौभाग्य है, ये श्रीमद् भागवतम द्वारा सिद्ध हो रहा है। महाराज परीक्षित अपने विषय में कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े भाग्यशाली हैं। तो इस प्रकार जब उन्होंने प्रश्न किया तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले श्री सुखदेव गोस्वामी को समाधि लग गई। इत्थं स्मपृष्टः सतु बादरायणी तत्स्मारितानन्त हृताखिलेन्द्रियः कृच्छ्रात् पुनः लब्ध बहिर्दृशिः शनैः प्रत्याहतं भागवतोत्तमोत्तम। फिर सूत जी संबोधित कर रहे हैं शौनक जी को कि हे भागवतों में सबसे श्रेष्ठ शौनक जी, जब इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी से, तो सुखदेव गोस्वामी को वो लीला याद आ गई कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं बछड़ा बने थे और स्वयं गोप बच्चा बने थे और गौओं का और माताओं का स्तन पिए थे 1 साल तक। ये लीला याद आ गई तो उनकी बाहरी वृत्ति हर ली गई, प्रश्न को सुन करके विसमाहित हो गए, बाहर का ध्यान नहीं रहा, उनका मन भगवान की लीला, साल भर कहाँ थे, क्या कर रहे थे, साल भर भगवान कृष्ण बने हुए थे बछड़ा और बच्चे और माताओं का गौओं का स्तन पिए थे, बहुत विहार किए थे। यह लीला स्मरण आते ही उनकी अखिल इंद्रिय हर ली गई, आंख खुली थी लेकिन बाहर देख नहीं रही थी, कान से सुन नहीं रहे थे, जिह्वा से बोलने की बात तो दूर रही, तो वे बिल्कुल समाधिस्थ हो गए। तो सभा में सन्नाटा छा गया कि अरे महाराज परीक्षित 3 दिन के बाद शरीर छोड़ेंगे, अब तो बताइए ये कथा बंद हो गई। इतना सुंदर प्रश्न हुआ कि वक्ता भगवान की लीला में सन्निविष्ट हो गया। तो बड़े कष्ट से उनको बाहर वृत्ति में लाया गया। कृच्छ्रात, इसकी व्याख्या करते हुए श्रीपद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि कृच्छ्रात वहां पर बहुत जोर से झांझ, करताल, मृदंग, भेरी, शहनाई आदि बजाए गए और कीर्तन जोर से चालू हुआ। सभा में जुटे हुए हजारों हजारों लोग कीर्तन गाने लगे, बहुत जोर की आवाज किए, तो कुछ देर के बाद तब सुखदेव गोस्वामी की बाह्य वृत्ति हुई, पुनः लब्ध बहिर्दृशि शनैः। धीरे धीरे बाह्य वृत्ति आई, तब वो देखे कि अरे मैं तो कथा कह रहा हूं, इस प्रकार का वक्ता हूं, भगवान की लीला में जिसका मन सन्निविष्ट हो गया पूरा पूरा। प्रश्न सुनकर के कृच्छ्राद शब्द बड़े कष्ट से उन्हें बाह्य वृत्ति में लाया गया। भगवान की लीला का इतना आकर्षण था कि सुखदेव गोस्वामी अब बोल नहीं रहे थे, देख नहीं रहे थे, लेकिन परीक्षित जी को कथा सुनानी थी, इसलिए और लोगों ने, ऋषियों ने, नारद जी ने, वेदव्यास जी आदि सब ने मिल करके कीर्तन चालू किया। जोर जोर से कीर्तन, करताल, मृदंग आदि बजाए जा रहे थे, सब बाजे बजाए जा रहे थे, तब जाकर के धीरे धीरे बाह्य वृत्ति आई। जब बाह्य वृत्ति आई तब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के प्रश्न का अभिनंदन करते हुए बोले, 13वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। श्री शुक उवाच, साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भागवतोत्तम जन्नूतनेशी सस्य श्रृण्वन्नपि कथां मुहुः। परीक्षित, तुम महाभाग्यवान हो और भागवतों में सर्वश्रेष्ठ। सुखदेव गोस्वामी इस तरह से महाराज परीक्षित की प्रशंसा कर रहे हैं। वास्तव में परीक्षित महाराज इस योग्य है, महाभाग, महान भाग्य है तुम्हारा। यह किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि माता उत्तरा के गर्भ में ही तुमने भगवान का दर्शन प्राप्त किया, तो इसलिए तुम महाभाग्यवान हो। और कृष्ण कथा सुनने में तुम्हारी इतनी आसक्ति है, रुचि है, इसलिए तुम भागवतों में सर्वश्रेष्ठ। त्वया भागवतोत्तम, भागवतोत्तम का अर्थ है भागवतेषु उत्तम। समस्त भक्तों में परीक्षित महाराज श्रीमावर हैं। ऐसा एक बार वर्णन चल रहा था, श्रील प्रभुपाद प्रवचन किए थे कई बार, तो एक बार उन्होंने कहा कि प्रहलाद महाराज भक्तों में दी बेस्ट हैं। प्रहलाद महाराज दी बेस्ट भक्त, बेस्ट भक्त। तो एक बार वे युधिष्ठिर महाराज के विषय में पूछ कह रहे थे, तो कहते थे भक्तों में वे सबसे श्रेष्ठ, बेस्ट। इसी प्रकार और भी किसी की चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वे भक्तों में श्रेष्ठ हैं, बेस्ट। तो अंत में उद्धव जी की चर्चा चली, तो उनके विषय में प्रभुपाद जी ने कहा कि वो भक्तों में बेस्ट है। तो एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी से कि आप इनको बेस्ट कह रहे हैं, उनको बेस्ट कह रहे हैं, उनको बेस्ट कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहे उद्धव जी के विषय में, यस, ही इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ऐसा कहा, बेस्ट से नीचे कोई नहीं है, गुड बेटर कोई नहीं है, सब बेस्ट है भगवान के भक्त। महाराज परीक्षित दी बेस्ट भागवत, भागवतोत्तम। जीवन के प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण का जिसे दर्शन मिला स्वयं ही, और जीवन के अंत में जो इस तरह कृष्ण कथा में रचा पचा है, ये चिंता नहीं कि शरीर चला जाएगा, राज चला जाएगा, परिवार छूटेगा, कोई बात नहीं, भगवान के कृष्ण कथा में मग्न है, इतनी आसक्ति। तो इसलिए भागवतोत्तम कह रहे हैं और महाभाग कह रहे हैं। क्यों तुम भागवतों में उत्तम हो और क्यों महाभाग्यवान हो, इसको एक और कारण से कह रहे हैं। जन नूतनयसी ईशस्य श्रृण्वन् अपि कथां मुहुः, क्योंकि तुम ईशस्य परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की कथा को श्रृण्वन् अपि बारम्बार सुन करके भी नूतनयसी, नूतन बना रहे हो, नित्य नवीन बना रहे हो। ऐसा लगता है जैसे तुमने पहले कभी सुना ही नहीं। जब कृष्ण कथा में रुचि होती है तो व्यक्ति और सुनने की उत्कंठा करता है, लालसा करता है, तो उसे लगता है कि अभी तो मैं सुना ही नहीं, अभी तो मैं सुना ही नहीं, अभी तो मैं सुना ही नहीं। महाराज परीक्षित की यह दशा है। तुम परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की कथा को बारम्बार सुन करके भी उसे नूतन कर रहे हो, नित्य नवीनी कर रहे हो, इसलिए तुम भागवतों में सर्वश्रेष्ठ हो, धन्य हो परीक्षित। जैसे परीक्षित महाराज ने तो कहा ही था कि हम धन्यतम हैं, तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि वास्तव में तुम धन्यतम हो और भागवतों में सर्वश्रेष्ठ हो और महाभाग्यवान हो। बहुत बड़ा सौभाग्य है तुम्हारा। कृष्ण कथा में किसकी कितनी रुचि है यही उसके बड़ाई का स्टैंडर्ड है, ये समझना चाहिए। और वास्तव में भक्ति करने का मतलब है कृष्ण के विषय में सुनना, यही सर्वश्रेष्ठ काम है। महाराज परीक्षित को जब मृत्यु का शाप मिला तो उन्होंने और कुछ नहीं किया, वे श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए बैठे, कृष्ण कथा सुन रहे हैं। इसका अर्थ है कि यही सबसे श्रेष्ठ, बहुत बड़ा सौभाग्य उस व्यक्ति का है वास्तव में जिसे कृष्ण कथा में रुचि हो गई। जन नूतने असी, नूतनेसी का अर्थ है कि बारंबार सुन करके भी अश्रुत चरिम करो सी, ऐसा लग रहा है कि तुम कभी नहीं सुने हो कृष्ण कथा, आज प्रथम बार सुन रहे हो, ऐसी लालसा हो रही। जब किसी वस्तु में किसी वार्ता में किसी की रुचि होती है तो उस व्यक्ति को ये नहीं दिखता है कभी खाया नहीं हूं या शाम हो गई या रात बीत गई, वो बोलता ही रहता है, एक बतिया सारी रतिया, सारी रात बात करते हुए बीत जाती। जिस वार्ता में रुचि होती है तो उसमें आदमी को ध्यान नहीं होता है कि मैं खाया पिया नहीं किया, ये नहीं किया वो नहीं किया। बहुत बड़ा तुम्हारा भाग्य है कृष्ण कथा में ऐसी दृढ़ निष्ठा, बहुत बड़ा भाग्य। अब वे उपमा दे रहे हैं, सताम अयम सार भर्ताम निसर्गो जदर्थ वाणी श्रुति चेत सामपि प्रतिक्षणम न व्यवदच्युतस्य जत स्त्रिया विटानाम इव साधु वार्ता। श्रील सुखदेव गोस्वामी एक अद्भुत उपमा दे रहे हैं और महाराज परीक्षित के इस दृढ़ निष्ठा को कि हे महाराज, जो आपका स्वभाव है वास्तव में ऐसा ही स्वभाव संतों का होता है, संतों का जो भगवान के भक्त हैं उनका ऐसा ही स्वभाव होता है, साधारण भक्तों का भी। आप तो बहुत बड़े हैं, आपके विषय में तो कहना ही क्या, लेकिन सामान्य जो भक्त हैं कृष्ण के उनकी भी यही प्रकृति होती है। उनकी वाणी, उनका कान, जदर्थ वाणी श्रुति चेत सामपि, वाणी कान और चित सब कृष्ण कथा के लिए ही होते हैं। वो कृष्ण कथा में चित लगाए रखते हैं, कान को लगाए रहते हैं, वाणी से बोलते रहते हैं। ठीक उस तरह से जैसे स्त्री लंपट पुरुष स्त्री की वार्ता में रस लेता है, जैसे कोई पर पुरुष लंपट व्यक्ति स्त्री की वार्ता सुनता है, किसी ज्योति स्त्री की वार्ता सुनता है या उसके साथ बात करता रहता है तो उसको नित नया नया रस आता है, कभी थकता नहीं है, कभी नहीं थकता है और नित नया नया रस लेता है। ठीक भगवान के भक्तों की ये दशा है। हरीश्वरी जी कहते हैं कि सुखदेव जी को यही उदाहरण मिला भक्तों की तुलना करने कहते हैं तो वो कहते हैं कि क्या कारण है कि सुखदेव जी भक्तों की उपमा स्त्री लंपट पुरुषों से दे रहे हैं। स्त्री लंपट व्यक्ति जैसे स्त्री के साथ बात करना चाहता है, चाहे उसके बारे में सुनना चाहता है और वो खान पान नींद सब भूल जाता है, उसे स्त्री की चर्चा नित्य नवीन लगती है, नित्य नवीन। उसे तो अभी तो कोई बात हुई ही नहीं, अभी तो चालू भी नहीं की है, अभी तो सारा बाकी ही है, सब सुन करके भी उसे नित्य नवीन लगता है। ऐसी ही भक्तों की दशा होती है, वे श्री कृष्ण की चर्चा सुनने में सदा रुचि लेते रहते हैं। तो दो ही चर्चा इस संसार में प्रसिद्ध है, कृष्ण चर्चा और स्त्री चर्चा, बस। बाकी संसार में तो 99% से भी 99% से भी ज्यादा लोग स्त्री की ही चर्चा में हैं, बहुत कम लोग कृष्ण चर्चा में रहते हैं, है ना, देख सकते हैं संसार में चारों तरफ। इस सिनेमा में स्त्री चर्चा के अलावा और क्या है, कुछ भी नहीं है। इतनी गोष्ठियां होती हैं, सभाएं होती हैं, सब होती हैं, सब ये चर्चा चल रही है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल किसी सैलून की दुकान में जाए तो वहां भी स्त्री का चित्र टांग दिए, क्योंकि लोग ये देखना चाहते हैं, उनकी हजामत बनाई जा रही है लेकिन दृष्टि इस तरह बर्बाद करते हैं, वो स्त्री को देखते रहते हैं। अगर स्त्री का चित्र न टांगे तो उस सैलून में नहीं जाएंगे, तो दूसरे तरफ चले जाएंगे। कोई भी दुकान है, कोई भी प्रचार है, कुछ भी है, ये है, तो बस स्त्री के द्वारा प्रचार करो। स्त्री संगी सारा संसार, बहुत कम लोग हैं जो भगवत संगी है, जो श्री कृष्ण की चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं। तो इस संसार में स्त्री के प्रति इतनी आसक्ति होती है, इतनी आसक्ति होती है, वो भी स्त्री लंपट व्यक्ति की, कामी की, कामिनियों के प्रति, कि वह उनकी चर्चा में नित नया नया रस लेता रहता है। तो भक्तों की ये दशा होती है कि कृष्ण कथा में वे ऐसा रस लेते रहते हैं। काम ही नारी प्यारे जिमे लोभ ही प्रिय जिमेदाम, तिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु महि राम। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस के अंत में प्रार्थना करते हैं कि हे राम, जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को धन प्रिय लगता है, उस तरह से आप हमको प्रिय लगिए, अब कृपा करके हमको प्रिय लगिए, मैं आपसे प्रेम कर सकूं। तो इस प्रकार श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तो हरिश्वर जी कहते हैं कि क्यों ऐसी बात कहते हैं, क्योंकि भगवान पर पुरुष हैं और परा प्रकृति के साथ वो लीला कर रहे हैं, अंतरंगा शक्ति के साथ। तो ये बीट के साथ है, स्त्री लंपट पुरुष के साथ भगवान का स्वभाव ही मिल रहा है, परा प्रकृति से लीला कर रहे हैं। परा प्रकृति मतलब अंतरंगा शक्ति, और परा प्रकृति का अर्थ दूसरे की स्त्री, एक अर्थ है। और पर पुरुष, परम पुरुष है ही, सबसे श्रेष्ठ पुरुष है, तो पर पुरुष है। तो जैसे पर पुरुष से, पर स्त्री से बात करता है, स्त्री लंपट इस तरह से रात दिन बात करता रहता है और कथा सुनता रहता है उसके विषय में, तो इस तरह से परम पुरुष भगवान की जो परा प्रकृति के साथ, अंतरंगा शक्ति के साथ लीला हुई है वृंदावन में, इस लीला को भगवत भक्तगण सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। ये उदाहरण दिया गया। सारा जगत वास्तव में स्त्री से बात करने में या स्त्री के विषय में बोलने में व्यस्त है, सारा संसार। मैं दिल्ली में कथा कहा था तो एक उदाहरण दिया था, मुझे याद है, शायद मैं अतिशयोक्ति कर दिया था, यही श्लोक आया था। तो मैं कहा कि दुनिया के जितने भी साधन हैं वो सब स्त्री के विषय में प्रचार करने के लिए या स्त्री से बात करने के लिए यूज किए जा रहे हैं सारे संसार। तो मैं कह दिया था जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन पर यदि बहुत अतिशयोक्ति न की जाए तो प्रायः लोगों का 80% टॉकिंग स्त्री के विषय में या स्त्री से ही होता है, और 20% में बिजनेस, स्कूल, ये सब चलता है। शायद मैं गलत नहीं बोला हूं इस तरह से यही चलता रहता है, ये यूज हो रहा है इस यंत्र का। उसी यंत्र पर आदमी सोचे चाहे तो कृष्ण कथा बोल सकता है, भगवान के बारे में बोल सकता है, पर भगवान में आसक्त हो, भक्त हो, तब ना। श्री सुखदेव गोस्वामी भक्त की तुलना स्त्री लंपट पुरुष से कर रहे हैं, वो जितना स्त्री के बारे में सुनने के लिए उत्सुक रहता है बात करने के लिए, उसी तरह से भगवान के विषय में भक्त रहते हैं, बल्कि भक्त उससे ज्यादा रुचि लेते हैं। कौन ऐसा स्त्री लंपट होगा जो भोजन त्याग करके, अनशन करके और स्त्री की चर्चा सुनेगा? महाराज परीक्षित तो भोजन त्याग करके, पानी पीना छोड़ करके कृष्ण कथा सुन रहे हैं और परम आसक्ति के साथ सुन रहे हैं। तो भक्तों की जो श्रेणी है वो ज्यादा है, आगे है, वो भगवान से प्रेम करते हैं तो करते हैं, और स्त्री लंपट व्यक्ति क्या स्त्री से प्रेम करेगा? उसका प्रेम उरेम नहीं, वो तो काम है, लस्ट है। लेकिन भगवान के भक्त जो भगवान से प्रेम करते हैं तो वो वास्तविक प्रेम होता है, और वो भगवान के विषय में ही सुनते रहते हैं, गाते रहते हैं, जपते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यह कह करके अब इनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्रृणु स्वावहि तो राजन अपि गुह्यम वदामि ते, ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। हे महाराज, सावधानी से सुनिए, चित्त को समाहित करके सुनिए। श्रृणु स्व अवहितः राजन, हे राजन, यह मैं जानता हूं कि आप बड़ी तत्परता से बड़ी एकाग्रता से भगवान के विषय में सुनते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसी लीलाएं सुनाने जा रहा हूं जिसको और ज्यादा समाहित चित्त से सुनिए, अवहित श्रृणु। यह श्रोता का कर्तव्य होता है कि भगवान की कथा को अधिक से अधिक सावधानी के साथ सुने, एक भी शब्द कान से बाहर गिरने न दे, लय में न जाए, नींद में न जाए और मन से विक्षिप्त न हो, अपने घर में, दुकान में, ऑफिस में मन को न जाने दे, इधर उधर न जाने दे, सुना करे, सुने इस तरह से। तो परीक्षित जैसे श्रोता को भी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, समाहित चित्त से सुनिए, अपि गुह्यम बदामिते, बहुत रहस्यमय कथा है, बहुत महत्वपूर्ण गुह्य कथा है, फिर भी मैं आपसे कहने जा रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरव गुह्यम अपित, गुरवः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुह्यम अपि ब्रूयुः। गुरुजनों का यह स्वभाव होता है, श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वयं कह रहे हैं, गुरुजनों का यह स्वभाव होता है कि अपने प्रेमी शिष्य को वे परम रहस्यमय बात भी बता देते। ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम अपित, यदि कोई शिष्य प्रेमी है, स्निग्ध है, अनुगामी है, श्रद्धालु है, तो उसको कोई भी महत्वपूर्ण बात बताई जा सकती है भगवान के विषय में। तो आप एक स्निग्ध व्यक्ति हैं, अनुगामी हैं, श्रद्धालु हैं, इसलिए परम गुह्य रहस्य होते हुए भी मैं आपको ये बात कहने जा रहा हूं, आपके प्रश्न का उत्तर देने चाह रहा हूं, लेकिन इसको आप सावधानी से सुनिए। अब महाराज परीक्षित के लिए क्या सावधानी बाकी थी, पर ये ध्यान देने की बात है, यह शिक्षा परीक्षित महाराज के लिए नहीं है, वास्तव में हम लोगों के लिए है। भगवत कथा के लिए फुल अटेंशन चाहिए, पूर्ण अटेंशन चाहिए, तब कथा का आनंद आ पाता है, भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी अब चालू करते हैं, तथाघ बदनान मृत्यु रक्षित्वा वत्स पालकान सरित पुलिन मानीय भगवान इदम ब्रवीत। मृत्यु स्वरूप है, अघासुर के पेट से बच्चों को और बछड़ों को लेकर के भगवान जमुना के पुलिन पर आए, सरित पुलिनम आनीय, सरित के पुलिन पर, जमुना के पुलिन पर ला करके बच्चों को, और भगवान ने इस तरह कहा। अब तो ये बात सभी बच्चे जानते थे कि हम एक अजगर के पेट में चले गए थे, बाद में भगवान ने कहा बाप री बाप, बहुत बड़े खतरे से बच गए, हमारे पिताजी ने बहुत पुण्य किया था, माँ जसोदा ने बहुत पुण्य किया था, इस तरह से वे बातों को कह रहे थे। और आप लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं कि एक बार अजगर के मुंह में जा करके भी आप जी करके आ गए। भगवान ये नहीं कहते थे कि मर गए थे, बाद में कहेंगे, ब्रज में पहुंचने पर कृष्ण कहेंगे कि ये सब मर गए थे, पर भगवान की कृपा से जी गए, नारायण की कृपा से जी गए। ये मूल नारायण बोल रहे हैं कि नारायण की कृपा से सब जी गए, जिलाए तो ये हैं, तो सबको लाए बचा करके। अब सांप के मुंह से निकल करके बच्चे कितने सावधान हुए होंगे और जल्दी से जल्दी बछड़ों को लेकर के और भागना चाहते होंगे, इतना देर तक तो खेले थे, खेल खेल में ही वह घासुर इनको निगल लिया था, ये स्वयं उनके उसके मुंह में चले गए थे। और जो भोजन सामग्री थी, जो छींके थे जिसमें दही भात और अचार वगैरह टांगा गया था, उसको लेकर के बच्चे वृक्ष में टांग दिए थे, जगह जगह वृक्ष में बांध कर रख दिए थे और खाली हाथ से खेल रहे थे, अब तक खाए नहीं थे। खेलने में एक तो रुचि थी, कृष्ण के साथ खेलने में देर हुई थी, और उसके बाद फिर अघासुर निकल गया था, उसमें कुछ देर हुई, तो एक सांप के मुख से निकल करके अभी भागे, बहुत चकित थे, डरे हुए थे, कृष्ण कहे डरो मत डरो मत, अब तो मर गया, तो सब चले तो सबको लाए, चलो चलो जमुना के पुलिन पर, पुलिन पर, पुलिन पर। ला करके यहाँ भगवान सब कहे होंगे कि हाथ पैर धो लो अथवा नहा लो, एक सांप के मुंह से उसे मरे हुए सांप से निकले हो तो स्नान कर लो, इसका तो उल्लेख नहीं है। लेकिन सरित पुलिनम आनीय, इतना सुखदेव जी कह रहे हैं सरित के पुलिन पर भगवान लाए और ला करके ये बोले। कौन बोले? भगवान इदम अब्रवीत, भगवान यह बोले। यहाँ भगवान का अर्थ है परम सुंदर, परम दयालु, बड़ी ही रसिकता पूर्वक, ममता पूर्वक बच्चों से बोल रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, इसीलिए उनको भगवान कहा जा रहा है। भगवान यह बोले, अहो तिरम्यम पुलिनम वयस्यः स्वकेलिसंपन्न मृदुलाच्छ बालुकम् उस्फुटत सरोगंधहृता लिपत्रिक ध्वनि प्रतिध्वान लस द्रुमाकुलम्। हे मित्रों, ये जमुना जी का पुलिन कितना सुंदर है, देखो कितना सुंदर है। अहो अति रम्यम पुलिनम वयस्या, वयस्या माने हे मित्रों, हे मेरे साथियों, ये जमुना जी का पुलिन कितना सुंदर है। अति रम्यम, यह रमणीय अति रम्य है, यहाँ हम लोगों को रहना चाहिए, यहाँ खाना चाहिए। भगवान कहने लगे, स्फुटत अहोति रम्यम पुलिनम वयस्या स्वकेली संपन्न मृदुलाच्छ बालुकम्। हम लोगों की लीला के उपयुक्त अथवा जमुना जी के लहरों के द्वारा संवारा हुआ कितना सुंदर बालू है बैठने के लिए, कोमल बालू का है, बहुत सुंदर। अच्छ बालुकम, अच्छ संस्कृत शब्द है, उसी को हिंदी में अच्छा कहते हैं। अच्छ बालुकम, सु अच्छ स्वच्छ, कितनी सुंदर बालुका है, सूक्ष्म कण है बालुका और संवारा हुआ है जमुना जी के लहरों द्वारा, बहुत सुंदर। स्फुटत सरोगंध हृताली पत्रिका ध्वनि प्रतिध्वन लसद्रुमाकुलम। और देखो यहाँ सरोवरों में और जमुना में कमल खिल रहे, स्फुटत सरोवर प्रस्फुटित हो रहा है कमल, और कमल के सुगंध को लेकर के हवा चल रही है, पवन चल रहा है, उससे आकृष्ट होकर के भौंरे और पक्षी गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं, और उन पक्षियों की बोली जल पर टकरा रही है तो उसकी प्रतिध्वनि निकल रही है, चारों तरफ पक्षियों की आवाज भरी हुई है, भौंरों की आवाज भरी हुई है, भन 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 या कुहू कुहू इत्यादि। तो पक्षी बहुत सुंदर गा रहे हैं, भौंरे गा रहे हैं, सुगंध फैली हुई है, पानी बहुत अच्छा है, भूमि बहुत अच्छी है, हवा सब कुछ अच्छा है। अत्र भोक्तव्यम अस्मा भी दीवारूढ़ सुधार देता बत्सा समीपे पह पृत्वा चरण तुषण का स्त्रीलम। तो मित्रों एक काम किया जाए, यहाँ हम लोगों को खाना चाहिए। अब पहले तो मन में संकल्प करके चले थे कि वन में भोजन करेंगे, लेकिन बीच में ये बच्चे ही भोजन बन गए थे अघासुर का। तो भगवान कहते अत्र भोक्तव्यम अस्मा भी, अब यहाँ हम लोगों को खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए। अस्मा भी अत्र भोक्तव्यम, अत्र जमुनाया पुलिने भोक्तव्यम, यहाँ भोजन करना चाहिए। भगवान को ये चिंता है कि बच्चे भूखे, कितने स्नेह में भगवान हैं, यह नहीं कह रहे हैं कि हम भूखे हैं, ये कह रहे हैं कि हमको खाना चाहिए, लेकिन उनके लिए कहते हैं कि आप सब भूखे हैं, हम लोगों को यह खाना चाहिए, करना चाहिए। अथवा एक और ये भी है कि भगवान अपने साथियों को खिलाने के लिए स्वयं कह रहे हैं कि हम भूखे हैं, यहाँ खाना चाहिए, यहाँ भोजन करना चाहिए। इस पर एक बात का संकेत मिलता है कि भोजन का जो स्थान है वो सुगंधित होना चाहिए, जैसे स्फुटत सरोगंध, कमल की गंध फैल रही है। भोजन बहुत शुद्ध स्थान में करना चाहिए, सुगंध हो और कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई कलह नहीं, आनंद में हो। झगड़ा करके भोजन नहीं करना चाहिए, अभी अपने पत्नी से लड़ाई करके और कहे कि लाओ खिलाओ तो क्या खाएगा, तो गुस्सा में आदमी है तो खाएगा क्या। आनंद से खाना चाहिए, भोजन जब आनंद से किया जाता है स्वाद के साथ तो शरीर में बल की वृद्धि होती है। तो बहुत बहुत, और आसन कैसा होना चाहिए, बहुत कोमल आसन, ठीक से बैठे, नहीं कि शरीर में गड़ रहा हो, कुछ आसन कठोर हो तो ठीक नहीं। और टेबल पर और डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उस अवस्थान खाने का नहीं होता। तो गीता प्रेस गोरखपुर में गया था एक बार, तो भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार कहे घर के लोग कुछ डाइनिंग टेबल लाए थे, तो भाई जी कहते हैं जब से डाइन घर में आई है तब से भोजन का रूप बिगड़ गया है। डाइनिंग टेबल को डाइन कहते थे, बस मोजा पहने हुए, जूता पहने हुए और चम्मच आदि लेकर के बिना हाथ पैर धोए बस खाना चालू किए। ये सब राक्षसों की रीति है खाने की, ऐसे नहीं खाना चाहिए। आराम से बैठ करके सुंदर आसन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कथा हो रही है और श्रोता बैठे हैं तो बालू होने से कितना आराम से बैठ रहे हैं। पत्थर पर इस तरह से आराम से नहीं बैठ सकते, ये सीमेंट के बने हुए स्थान पर यह आनंद आता है बैठने में। तो इस तरह से भोजन का स्थान ऐसा होना चाहिए। और कुछ पक्षी बोल रहे हैं, भौंरे बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई सुंदर गीत लगा लेना चाहिए खाते समय, कोई भजन का कैसेट लगा लेना चाहिए, इस तरह की इससे खाना चाहिए। नहीं कि दुनिया की बातें करे, गप करे और खाता जाए, ऐसा नहीं। भगवत प्रसाद खाने में ये सब नियम रखना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि अत्र भोक्तव्यम अस्मा भीर दीवारूढ़ सुधार देता। देखो दिन चढ़ गया, हम लोग इसके पहले खा लेते थे लेकिन आज दिन चढ़ गया, ऐसे फंस गए थे विपत्ति में, क्या करें, यहाँ खाओ खाओ खाओ, कि पानी निकट है। भोजन में पानी की बहुत आवश्यकता होती है, तो पानी निकट है। वो बच्चे कोई गिलास लोटा लेकर नहीं गए थे, वो खाते थे और जाकर जमुना जी से पानी पी लेते थे, बस हो गया। इतना संग्रह नहीं करना चाहिए कि दस दस कटोरी और गिलास, उनको मांजने धोने में बहुत टाइम बर्बाद होता है। इसीलिए जो उच्च कोटि के साधक होते हैं वो लोग करपात्री हो जाते हैं, दोनों हाथों को जोड़े एक बर्तन बन जाता है, इसी से पी लेते हैं, इसी में खा लेते हैं, खो गया। जो विषयी लोग होते हैं बहुत सामान संचय करते हैं, ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, और एक प्लेट में 10-20 कटोरियां रख देते हैं। ये सब फैशन है। ये भगवान कैसे खा रहे हैं आप लोग देखेंगे सुनेंगे। उन्हें कहा कि यहाँ हम लोग खाएं, यहाँ पानी है, शुद्ध हवा है, सुगंध है, जमीन बहुत अच्छी है, कोयल बोल रहे हैं, भावरे गुनगुना रहे हैं, इस तरह से भोजन का स्थान है बहुत सुंदर, यहाँ हम लोग खाएं। दीवारूढ़, क्योंकि दिन बहुत चढ़ गया है, सुधार जीता और भूख भी लग गई है, भूख से व्याकुल है हम सब। कुछ बच्चों ने कहा कि और इधर भोजन में लग जाएंगे तो बछड़े बछड़े तो चले जाएंगे इधर। तो भगवान ने कहा कि वत्सा समीपे पहपित्वा चरंतु शनका स्त्रीलम। ऐसा काम किया जाए कि बछड़ों को पहले पानी पिला लो, चलो पानी पिला लें बछड़ों को, और उनको एक जगह घेर दिया जाए, यहाँ धीरे पानी पी करके खाएं, ये घास चरते रहेंगे और हम लोग खाते रहेंगे। तो बच्चों ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, तब वे तैयार हो गए। तैयार हो करके कैसे आसन पर बैठ रहे हैं इसका वर्णन सुखदेव जी करते हैं। कृष्णस्य विश्वपुरुराज मंडलैः अभ्यानना फुल्ल दृशो ब्रजार्भकः सहोपविष्टा विपिने विरेजुः छदा जथाम्भो रुह कर्णिकाय। भगवान के साथ जमुना के पुलिन पर बच्चे बैठ रहे हैं खाने के लिए, किस तरह से बैठे हैं इसका वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अद्भुत ढंग से किया है। कृष्णस्य विश्व पुरुराज मंडलैः अभ्यानना फुल्ल दृशो ब्रजार्भकः। कृष्ण बीच में बैठे हैं, बिल्कुल बीच में, और उनके चारों तरफ मंडलाकार पंक्ति में, कई पंक्तियों में बच्चे बैठे हैं। आपने कमल देखा है, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं छदा जथाम्भो रुह कर्णिकाया, जैसे कमल की कर्णिका के चारों तरफ पत्ते होते हैं छोटे छोटे बड़े बड़े बाद,
इस तरह से कृष्ण के चारों तरफ बच्चे बैठे, कृष्ण बीच में बैठे, परम सुंदर भगवान बीच में बैठे हैं और उनके चारों तरफ पहली लाइन में उनके आठ सखा बैठे, आठ सखा, और प्रत्येक को अभ्यानना। श्री कृष्ण ने अपना ऐसा ऐश्वर्य प्रकाशित किया कि प्रत्येक सखा को यही अनुभव हो रहा था कृष्ण मेरे सामने बैठे हैं। ऐसे देखने में दूसरे सखा को, हमने प्रत्येक सखा को यही अनुभव हो रहा है कि मैं कृष्ण के सामने बैठा। सर्वतः पाणी पादम तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम। उपनिषद कहता है कि भगवान में सब जगह मुख है, सब जगह पैर है, सब जगह आंख है। ये श्रुति का वाक्य आज सत्य हो गया बिल्कुल। कोई नहीं देख रहा है कि मैं पीठ की तरफ बैठा हूं या मैं बगल में बैठा हूं। प्रत्येक बालक यही समझ रहा है कि मैं कृष्ण के बिल्कुल सामने बैठा हूं। तो पहले आठ सखा बैठे, इसके बाद 16 सखा बैठे, इसके बाद 32, इसके बाद 64, इस तरह से। और जैसे कमल की कर्णिका जो मध्य भाग होता है उसको कर्णिका कहते हैं, कमल के फूल की। तो कर्णिका के बाद जो पत्ते होते हैं कमल के, तो पहले छोटे होते हैं और धीरे 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 वो बड़े होते जाते हैं, ऐसे देखा गया। इस तरह से बच्चे बैठे थे। जो बड़ी उम्र के थे थोड़ा, वो किनारे किनारे बैठे थे, परंतु वे भी ये देख रहे थे कृष्ण मेरे सामने बैठे हैं। कोई भी बच्चा यही देख रहा था कृष्ण मेरे सामने बैठे। इस तरह से ये परिवेशन लीला हो रही है, बैठने की लीला, उपवेशन लीला भोजन के लिए। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये देखे कि मैं कृष्ण के सामने नहीं बैठा हूं। अभ्यानना ये शब्द ध्वनित कर रहा है, अभी आनना, अभितः का अर्थ सम्मुख, सम्मुख आनना। प्रत्येक बच्चा अनुभव कर रहा है कि मैं कृष्ण के सामने बैठा हूं। यह भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य बैठ, बहुत सुंदर छवि हो रही। एक तो जमुना जी का दृश्य बहुत सुंदर है, वृंदावन भूमि बहुत सुंदर है, सुंदर स्वच्छ बालू का जिसको बैठा दिया गया है अच्छी तरह से जमुना की लहरों से। तो बच्चे बैठे हैं, सुंदर गीत हो रहा है पक्षियों का, भावरों का, सुंदर हवा चल रही है, सुगंध बिखर रहा है, और परम सुंदर श्री भगवान कृष्ण और परम सुंदर बच्चे खिले हुए हैं। इस पृथ्वी के श्रृंगार हैं वास्तव में। इस पृथ्वी पर इस तरह का दृश्य हो रहा है और वृंदावन में, धन्य है वृंदावन की भूमि। भगवान मध्य में बैठे हैं और बच्चे सब चारों तरफ बैठे हैं। कृष्ण वहां बैठे हैं बीच में, तो ऐसा लगता था कि एक दिव्य कमल खिला हुआ है वृंदावन में स्थल पर, और कृष्ण कर्णिका के समान है मध्य भाग में, और जो बच्चे हैं उस कमल की पंखुड़ियों के समान है, पत्तों के समान है। परम सुंदर लग रहे हैं बच्चों का जो शरीर है वो कमल से भी अधिक सुंदर है, सुकुमार है, कृष्ण का तो कहना ही नहीं। तो वृंदावन की भूमि में जमुना के पुलिन पर यह दृश्य उपस्थित हुआ। इस प्रकार का दृश्य संसार में कहीं नहीं होता है, वैकुंठ में भी नहीं होता है। जिस छवि को प्रकाशित करते हुए श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ भोजन के लिए बैठे, यह दृश्य केवल वृंदावन में होता है। पृथ्वी धन्य हो गई इस दृश्य को लेकर के। इतना सुंदर भगवान लग रहे थे और इतने बच्चे सुंदर लग रहे थे। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विपिने विरेजु, उस वन में बहुत सुंदर लग रहे थे बच्चे, बहुत सुंदर लग रहे थे भोजन के लिए बैठे। छदा जथाम्भोरुह कर्णिकाया, जैसे अम्भोरुह कर्णिका कमल की कर्णिका के चारों तरफ पत्ते रहते हैं, उस तरह से बच्चे लाइन लाइन में गोलाकार बैठे हुए थे और बहुत सुंदर छवि हो रही थी। इस पृथ्वी पर यह कमल जैसा लग रहा था, श्री कृष्ण कर्णिका हैं और बच्चे उसके छद हैं, पत्ते हैं, बहुत सुंदर दृश्य हो रहा था। बच्चे सारी सारी बैठे हैं वो लाइन लाइन में, और किस तरह से वे बैठ करके भोजन कर रहे हैं। केचित पुष्प ही दलही केचित पल्लवै रंकुरहि फलहि शिग्भि त्वग्भि दृशद्भिश्च बुभुजुः कृतभाजनः। तो बच्चे अपने अपने घर से भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ लाए थे, अपने छड़ी में बेंत में सीके को लटका करके वे आते थे। बहुत सुंदर भोजन लेकर के आते थे, स्वादिष्ट ताजा भोर में बनाया हुआ भात और सजाव दही, ये मुख्य भोजन था। सजाव दही समझते हैं ना, जिसकी मलाई निकाली नहीं गई है, उबाल करके गाढ़ा दूध कर दिया गया है, उसका सारा घी माखन सब उसी में है। आजकल तो लोग कहते फैट नहीं चाहिए, सारा माल निकाल लो, हमको पानी दे दो। ऐसे इतने रोग हो गए हैं कि आदमी खा नहीं रहा। तो सजाव दही लेकर आते थे और भात बहुत सुंदर चावल का, और भी वस्तुएं रहती थी, अचार भी लेकर बच्चे आते थे घर से, कई प्रकार के भोज पदार्थ। बर्तन लेकर नहीं आते थे, नहीं कि घर से थाली बांधे और ढोए बेकार, वो सब लेकर नहीं आते थे। इसलिए केचित पुष्पई फलई केचित पल्लवय रंकुरई, केचित पुष्पई दलय केचित पल्लवय रंकुरई फलई। कुछ है बच्चे पुष्प को ही अपना बर्तन बना लिए थे, फूल को ही बर्तन बना लिए। बड़े बड़े फूल मिलते हैं, कोई कोई फूल बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे केला का फूल होता है, तो केला के फूल को अगर तोड़ तोड़ कर अलग कीजिए तो एक एक बर्तन हो जाता। तो कोई कोई फूल ले लिए, उसी में भोज सामग्री रख रहे हैं, सब खोल रहे हैं। पहले कृष्ण के सामने सब बैठे हुए हैं, कोई भी कृष्ण के पीठ में नहीं है, कृष्ण का पीठ है ही नहीं उस समय। वास्तव में उपनिषद कहता है कि सर्वतः पाणि पादम तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम, ब्रह्म में भगवान में सब ओर मुख है, सब ओर नाक है, कान है, सिर है, पैर है, सब ओर है। तो सब सामने बैठे हैं, खोल रहे हैं। मुख्य उद्देश्य है कृष्ण को भोजन कराना पहले। तो कोई पुष्प लेकर के बर्तन बनाकर बैठे, पुष्प ही केचित पुष्प ही दलई केचित, कोई कोई पत्ता दल करते पत्ता तोड़ लिए, से पलाश का पत्ता जो बड़ा बड़ा होता है उसको ले लिए। दलई केचित पल्लवई अंकुरई फलई, कुछ लोग पल्लव वृक्षों के नए नए पत्ते जो बड़े बड़े होते हैं, आपने देखा होगा किसी किसी वृक्ष के पत्ते जो नया उत्पन्न होते हैं बहुत बड़े होते हैं, तो वो पल्लव ले लिए। कुछ लोग अंकुर ही, कुछ अंकुर के रूप में चीजें उत्पन्न होती हैं, वो चौड़ी होती हैं, तो अंकुर पर रख लिए अपने भोज्य पदार्थ को। और फल है, कोई कोई फल ऐसा होता है कि उसको काट करके उसको कटोरी बनाया जा सकता है, थाली बनाया जा सकता है, तो उसको काट करके रख लिए बर्तन के रूप में। फल ही सिग भी, और कोई कोई अपने छीके में ही खाने लगे, जो गमछा लेकर के आए थे या और कोई सामान कपड़ा उसी को खोल करके रख लिए। भगवान को देना है भोजन, लेकिन कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि सात बार मांझो, ये करो वो करो, इतनी शुद्धि हो तब जा करके भगवान खाएंगे, इस तरह से मंत्र पढ़ेंगे, इस तरह से ये करेंगे, इस तरह से आचमन करेंगे तब खाएंगे। वहां प्रेम के अलावा और कुछ नहीं है, प्रेम चाहिए, प्रेम के भूखे हैं भगवान। तो बच्चों में खिलाने की भावना है तो सब अपने अपने घर में बताइए गमछा में बांध करके लाए हैं, कृष्ण के सामने खोल करके रख रहे हैं। और सिख भी पग भी, कोई कोई भुर्ज तरु भोज पत्र के छाल को, वृक्ष के छाल को ले लिए बर्तन के रूप में, और कोई दृषद भी, कोई पत्थर, चौड़ा चौड़ा पत्थर, पतला पतला प्लेट उठा करके कहीं से लाए और उसको धो करके उस पर रख लिए पत्थर पर, खा करके फिर छोड़ देंगे, वो सियार कुत्ते वगैरह चाटेंगे खाएंगे, चाहे हम जैसे भक्त फिर चाटेंगे खाएंगे। तो पत्थर पर खाने लगे। बुभजू कृत भाजना, इन सब वस्तुओं से ही कृत भाजना, कृत पात्र है, पात्र बना बना करके खाने लगे। कहीं भी कोई बाजार से खरीदा हुआ पात्र नहीं था, कोई स्टेनलेस स्टील नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। कितना नेचुरल, कितना स्वाभाविक जीवन है इन बच्चों का, कितने आनंद में है। खाने के लिए पत्ता पत्थर इधर उधर से ले लिए और खाने लगे। सर्वे मिथो दर्शयंत स्वस्व भोज्य रुचिम पृथक हसंतो हास्यंतश्च, अभ्यो जहरु सहेश्वरा, और सब अपनी अपनी भोज्य रुचि दिखा रहे हैं। भोज रुचि का अर्थ है कोई भी बच्चा जब अपने घर का लाया हुआ सामान खोलता है तो पहले कृष्ण को नहीं खिलाता है, वो खा करके और कहता है बाप रे बाप अमृत जैसा लग रहा है, इतना मीठा है इतना मीठा है। तो कृष्ण कहते हैं दो दो दो, पहले दो दो हमको, दो हमको दो, अरे बाप इतना मीठा है इतना मीठा। इसलिए बोलता है कृष्ण मांगे, इसके आगे तो अमृत भी फीका है, क्या अमृत पिए हो देखे हो? तुलना कर ले, कहता है ऐसा मैंने तो जीवन में कभी नहीं खाया था, बाप रे बाप मैं तो किसी को नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा, इतना अच्छा है इतना अच्छा है। तो कृष्ण कहते मुझको भी नहीं दोगे? नहीं नहीं तुमको तो बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, देखते हो कितना थोड़ा है। अच्छा नहीं मित्र तो थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा दे दो, दे दो दे, तुम नहीं नहीं देंगे। तो कहते थोड़ा एक शर्त मैं मानूंगा तब दूंगा, एक शर्त रखूंगा अगर मानोगे तो दे दूंगा। तो कृष्ण कहते ठीक है ठीक है, अगर पूरा खाना हो तब तो ठीक है दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। पूरा खाओगे? तो कृष्ण कहते हाँ हाँ पूरा खाऊंगा। तो कृष्ण को के मुख में वो देता है खाने के लिए, कृष्ण खाते हैं तो कहते हैं अरे बाप रे बाप ये तो बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है, तुम रोज ऐसा बनवा करके लाया करो, मैं रोज खाऊंगा रोज खाऊंगा। तो वो कहता है रोज खाओगे पेटू कहीं के, रोज तुमको खिलाऊंगा। अरे आज दे दिया कि मैं रोज थोड़े खिलाऊंगा, ऐसा बात बोलो मत, हम कितने गरीब घर के ग्वाल है, तू राजा के लड़के हो, कहते रोज रोज खाओ, शर्म नहीं आ रही है? रोज नहीं लाऊंगा, अरे आज दे रहा हूं खा लो भरपेट खा लो ठीक है, आखिर हमको भी तो चाहिए ना, हमको चाहिए ना। तो कृष्ण कहते हैं नहीं मित्र मेरे घर का तुम खा लो। तो भगवान कृष्ण अपने हाथ से खिलाते हैं सखा को, प्रत्येक को, कृष्ण है एक ही लेकिन प्रत्येक बच्चा यही देख रहा है कि मैं सामने बैठा हूं, सबके साथ यही लीला चल रही है। और बच्चे जो भी कृष्ण को खिलाते हैं पहले वो जूठा करके खा करके देखते हैं कि खाने लायक है कि नहीं कृष्ण के, कहीं दही खट्टा तो नहीं है, कहीं कुछ तो नहीं है, तो खा करके तब कहते अरे ये तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और भगवान को खिला रहा। तो प्रेम के भूखे भगवान खा रहे हैं। किस तरह से श्री कृष्ण बैठे हुए हैं इसका वर्णन सुखदेव जी करते हैं, और उन बच्चों के विषय में कहते हैं हसंत हास्यंतश्च, बच्चे खाते समय खूब हंसते थे और हंसाते थे, हंसाते थे। कभी कभी कृष्ण कहते थे देखो बानर कितना धैर्य रखे हैं, इनको शिक्षा दिया गया है, नहीं तो अब तक मानते, अब तक तो छीन करके चले जाते, लेकिन बानर कितने सभ्य हो गए हैं, चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे। तो वो बच्चा जो साथ में बैठा है उधर देखने लगता है तब तक कृष्ण अपना भोजन उसमें डाल देते हैं, तो ये बालर उच्छृंखलता छोड़ दिए है, नहीं तो ये कब का ले लिया होते, जल्दी जल्दी खाओ नहीं तो ये बाद में लूट सकते हैं बालर। वो कुछ देखने लगते हैं तो कृष्ण अपना रख देते हैं, खासकर मधुमंगल जी के प्लेट में। मधुमंगल जी कहते हैं कृष्ण से छी छी तुम गोप और मैं ब्राह्मण, तुम्हारा जूठा मैं खाऊंगा, छी छी मेरी जाति का नाश कर दिया, जाति का नाश कर दिया, क्या करें, और खाता भी नहीं हूं तो दिन भर तो स्टार्विंग करना पड़ेगा, दिन भर तो भूखे रहूंगा, इसलिए क्या करूं, अब तो खाना पड़ेगा, लेकिन मेरी जाति गई मेरा धर्म गया सब गया। इस तरह से विनोद करते थे, हंसते थे, और हंसने में दही भात का छीटा भी पड़ जाता था इधर उधर, हंसने में कृष्ण पर भी पड़ता था। तो जो प्रभु यज्ञ भुग बाल के लिए जो यज्ञों में भोजन करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं कोई ठीक नहीं रहता है, इधर से खूब वेद मंत्र पढ़ करके शुद्धि अशुद्धि का विचार करके देश काल आदि का विचार करके हवन होता है पूजन होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं आते हैं, और वही प्रभु बच्चों से छिन छिन करके खा रहे हैं। कोई बच्चा कुछ खा करके रसगुल्ला या गुलाब जामुन जो भी खा रहा है और खा करके संकेत करता बाप अब इतना मीठा मीठा बोला नहीं जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है। तो कृष्ण उसको पकड़ करके कहते देना पड़ेगा देना पड़ेगा देना पड़ेगा, तो उसके मुख के पास अपना मुख लगा करके कहते हैं दो दो, और बच्चा देता है भगवान खा लेते हैं। ब्रह्मा जी ये सब लीला देख रहे थे, बाप रे बाप, कोई झूठ का विचार नहीं, कोई विधि निषेध का विचार नहीं, भगवान इस तरह खा रहे। उसमें से जूठा खाने का तो कोई निषेध था ही नहीं, कई तरह से छीन करके खाना, हंसना, और बीच में कभी कभी कृष्ण खड़े हो जाते थे, नाचने लगते थे, कभी प्रशंसा करना, और कभी कभी किसी बच्चे के भोजन के कहते हैं अरे बाप रे राम राम सड़ा हुआ है ये हम खाते हैं, ऐसे ही विनोद में कहते हैं। भोजन तो अमृत के समान है सब कुछ, लेकिन कभी कभी कृष्ण ऐसा कहते हैं, कोई बच्चे कह छी छी तुम्हारे तो ये तो देखने लायक नहीं, देखने लायक नहीं, फिर बानर को दे दो, तो बानर को दे दो। तो वो बच्चा कहता है बानर को क्यों दे दूं, तुमको देना है तुम दो, हम नहीं देंगे, हम क्यों बानर को देंगे, कहाँ है बानर। तो भगवान दिखाता है उधर बानर है, तो वो अपना रख देता है कृष्ण। तो कृष्ण कहते कौन डाला कौन डाला ये कौन डाला, सभी बच्चे कहते हमने नहीं हमने नहीं, जो सामने बैठा कहता हमने नहीं हमने नहीं, कौन डाला कौन डाला, मैं यही तुम्हारे जूठा खाऊंगा, ये डाला वो डाला, इस तरह से बहुत बहुत विनोद करते हैं, बहुत बहुत विनोद करते हैं। हसंत हास्यंत, हंस रहे हैं हंसा रहे हैं, विविध प्रकार से हंसी हो रही है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत बहुत बात लिखे क्या 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 हंसी हो रही है, कैसे कैसे हंसा रहे हैं भगवान, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, बीच में खूब ठहाका लग रहा है, इसके बाद फिर खाते हैं। खा करके बात वहां तो कोई ऐसा तो है नहीं कि अब ऑफिस पकड़ना है 10 बजे जल्दी चलो ट्रैफिक जाम हो जाएगा ये हो जाएगा, क्या आदमी भोजन करेगा जहां इतनी फुर्सत नहीं है। आदमी कभी कभी कहता है मरने तक की फुर्सत नहीं, चाहे जमराज जी आएंगे तो लोग कह देंगे कि बाद में आइएगा अभी मरने की फुर्सत नहीं, चाहे कह देगा तो मरने की पूरी फुर्सत हो जाती है, मरने से पहले अस्पताल में फुर्सत लेकर के चले जाते, बहुत फुर्सत रहेगी। ये आनंदमय जीवन है भगवान के साथ इस तरह खेलना खाना नाचना। कभी कभी कोई बच्चे हाथ में दही भात का कौर लिए लिए थिरक थिरक कर नाचने लगते फिर बैठते हैं फिर खाते हैं, कोई बीच में जाकर जमुना में पानी पीकर के आकर फिर बैठता है। कोई बर्तन नहीं है कि कृष्ण के लिए लाया जाए, अगर कृष्ण को भी प्यास लगी है तो जाकर पानी पी करके आते हैं। जमुना जी में दो तरह से पानी पीते हैं कृष्ण, या तो हाथ से ऐसे पीते हैं तो पशु जैसा ऐसे पीकर आ जाते अपने अधरामृत का संजोग देते हैं भगवान नदियों को सरोवरों को, इस तरह से पीते थे। तो स्वस्व भोज रुचि पृथक दर्शन, तो अपनी भोज रुचि दिखाते थे कि हमारा भोजन इतना अच्छा है, हमारा भोजन इतना अच्छा है, हमारा ये है हमारा ये है हमारा ये है। तो श्री कृष्ण कभी कभी प्रशंसा करते थे, कभी निंदा करते थे उनके सुख के लिए, कभी नाचने लगते थे, कभी विहार करने लगते थे, कभी कहते थे देखो ये कोयल कितना अच्छा बोल रहा है, बानर ये कर रहा है वो कर रहा है वो कर रहा है, तो तब उसका उठा कर ले लेते, कभी कभी उस बच्चे का उठा कर ले लेते थे, हमारा कौन लिया हमारा कौन लिया, पता नहीं कौन डाल दिया हमारे, कृष्ण कहते थे हमारे प्लेट में कौन डाल दिया हमको पता नहीं, हमारे पत्र में कौन डाल दिया, इस तरह से खा रहे थे। भगवान की छवि का चित्र खींचते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बिभ्रद वेणु जठर पटय श्रृंग वेत्रे चकक्षे बामे पाणौ मसलन कवलम तत्फला नंगुलेषु तिष्ठन मध्य स्वपरिसुहृदो हासयन नर्म भी सही स्वर्गे लोके मिसति बुबुझे यज्ञ भुग बाल के लिए। श्री कृष्ण बैठे हैं भोजन बीच में बिल्कुल, कैसे हैं बिभ्रद वेणु जठर पटयो, अपने वेणु को बांसुरी को अपने कमर में बंधे हुए दोनों कपड़े के बीच में खोस लिए, बांसुरी इधर उधर नहीं छोड़ते हैं, नहीं तो बच्चे चुरा लेते हैं फिर बहुत परेशान करते हैं कृष्ण को। तो भोजन करते समय अपने बांसुरी को जठर पटय अपने जठर के अपने पेट के दोनों पट में खोस लिए, उस समय एक तो धोती पहने हैं और धोती पहन करके ऊपर से दुपट्टा बांधे हैं तो दो कपड़े हुए, तो दोनों कपड़ों के बीच में खोस लिए वेणु। बिभ्रत वेणु जठर पटय, जठर पट में वेणु रखे हैं। श्रृंग वेत्रे च कक्षे, और सिंह है तथा बेत को बाएं कुक्षी में दबा लिए हैं, इधर उधर नहीं रखे हैं कि ये बच्चे फेंक देते हैं चुरा लेते हैं बहुत परेशान करते हैं कृष्ण को। तो बेत को जो बछड़ों को हांकने के लिए था और बुलाने के लिए सिंह, सिंह और बेत को बाएं कांख में दबा लिए कुक्षी में। सिंह वेत्रे चकक छे, बाण बामे पाड़ मसृण कवलम, और बाएं हथेली पर बहुत स्निग्ध दही भात का कवर है जिससे भात में घी मिलाया गया है, ताजा दही मिलाया गया है और कुछ गुड़ी मिलाया गया होगा जो भी हो, ये दही भात और घी मिलाया गया। तो हाथ में मसृण कवल, बहुत स्निग्ध बहुत स्वादिष्ट कवल लिए हैं दही भात का। बामे पाणव मसृण कवलम तत्फलानी अंगुलीसु, और अंगुलियों में उस दही भात के अनुसार खाए जाने वाले अचार खोसे हुए हैं उसके फल। से कहते हैं कि खिचड़ी के चार यार होते हैं, पापड़ घी अचार क्या क्या। तो भगवान दही भात का कवर लिए हैं तो दही भात के साथ और क्या क्या खाना चाहिए। तत्फलानी, उसके फल रखे हैं, अदरक रखे हैं, टेटी का फल रखे हैं, नींबू रखे हैं, ऐसे अंगुलियों के संधि स्थान में वो फंसा लिए स्टैंड। ऊपर दही भात का कवर है और बीच बीच में अचार खोसे हैं, और ऐसे खा करके और तब अचार निकाल कर खा करके फिर खोस लेते हैं इस तरह से। कितना कम संग्रह है ईश्वर का, जिसने सारी दुनिया बनाया है, सारा जगत की सृष्टि किया भगवान ने, कितना कम संग्रह कर रहे हैं। हाथ पर दही भात का कवर है और उस कवर के अनुसार जो भोजन के अनुसार जो फल है खट्टा अचार वगैरह खोस लिए। चार जगह खोसे हैं, चार अचार, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, अदरक नींबू मिर्च और टेटी, चार संधि स्थान है, चार स्टैंड है, यहां पर वो रख करके और खा रहे। तत्फलान अंगुलीसु तिष्ठन मध्य, बिल्कुल मध्य में है बच्चों के, स्वपरिशुर्दो हास्य नर्म भी स्वयं, हंसी कर रहे हैं मजाक कर रहे हैं, बहुत प्रकार से बात बना बना करके हंस रहे हैं, परिहास कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और भोजन कर रहे हैं। इस दृश्य को सारा स्वर्ग देख रहा था, सारे देवता ऊपर से उपस्थित होकर देख रहे थे। स्वर्गे लोके मिसति, मिसति का अर्थ देखते हुए, सारा स्वर्ग देख रहा है, इसका मतलब कि स्वर्ग के सब देवता आ गए हैं। नहीं तो ये कहा जाता कि देवता देख रहे हैं, कह रहे स्वर्ग देख रहा है, जैसे कहीं कहीं कहा जाए कि पूरा भारत आ गया है, इसका मतलब बहुत लोग आए हैं। तो सारे देवता इंद्र आदि देवता सब देख रहे हैं, ब्रह्मा जी भी थे उसी समय, अघासुर का वध हुआ तो नहीं थे लेकिन अब तो आकर के देख रहे हैं, सब विस्मित हो गए यज्ञ भोग बाल के लिए। सब यही याद कर रहे हैं कि वही प्रभु जो यज्ञ में भोजन करने नहीं आते हैं, मंत्र के अनुसार देश के अनुसार काल के अनुसार द्रव्य के अनुसार बहुत बहुत शुद्धि पूर्वक फर्स्ट क्लास के ब्राह्मण वेद मंत्रों से भगवान को बुलाते हैं, इहा गच्छ यह तिष्ठ इदम गृहाण, हे भगवान आप आइए और हमारे दिए हुए उपहार को हमारे आहुति को ग्रहण कीजिए। लेकिन भगवान आते नहीं हैं, किसी किसी यज्ञ में आते हैं, जैसे पृथ्वी महाराज के यज्ञ में आए थे और कुछ यज्ञ में आए थे, लेकिन ज्यादा आते नहीं हैं, केवल संकल्प मात्र से अर्पित किया जाता है कि आप लीजिए लीजिए, इतनी शुद्धि पूर्वक देने पर भी नहीं आते। वही भगवान इन गोप सखाओं के परिषद में इस तरह से खा रहे हैं, जूठा छिन छिन करके खा रहे हैं, जूठा खिला रहे हैं, कभी नाच रहे हैं कभी गा रहे हैं बातें बना रहे हैं, अद्भुत भगवान की लीला। इस तरह श्री कृष्ण बच्चों के साथ जमुना के पुलिन पर बैठकर भोजन कर रहे हैं, यह नित्य की लीला है, प्रतिदिन ऐसा भोजन होता था। एक दिन का वर्णन करके सुखदेव गोस्वामी ये नमूना पेश कर रहे हैं कि इस तरह श्री कृष्ण भोजन करते थे। तो अपने सखाओं के मध्य में बैठे हुए श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे थे, बच्चे सुंदर लग रहे थे। धन्य है वृंदावन की भूमि जहां इस प्रकार का दृश्य उपस्थित होता है। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वच्छंद अपने धाम में इस तरह खा रहे हैं, खेल रहे हैं, विहार कर रहे हैं। बच्चों का कितना बड़ा भाग्य है भगवान के साथ इस तरह से खा रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। ये भगवान की भोजन लीला। अब इसके बाद ब्रह्मा जी बछड़ों को और गोपों को भी चुराएंगे भगवान की एक अलग मंजू महिमा देखने के लिए। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।